कि जब ब्रह्मा जी भगवान के सब ग्वाल बछड़े चुरा के ले गए और फिर उनको मालूम पड़ा कि ये साक्षात भगवान हैं, मैंने इनकी परीक्षा लेना चाही, बड़ी भारी भूल हो गई हमसे। अब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े वहीं पर आए जहां भगवान श्री कृष्ण उसी अवस्था में हैं। बगल में बेंत लगा हुआ है, हथेली पर दही भात का कौर है और भगवान बछड़े वहां चरा रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिर जाते हैं, दंडवत गिर जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम, चारों मुखों से चारों मस्तकों से भगवान को प्रणाम करते हैं, यानी लोट लोट के प्रणाम किया उन्होंने, कभी एक मुख से फिर लोट गए, एक दूसरे मुख से फिर तीसरे मुख से लोट लोट करके चारों मस्तकों से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बहुत देर तक चरणों में पड़े ही रहे ब्रह्मा जी, काफी देर तक चरणों में पड़े रहे। तब अपने को संभाल के उठे और भगवान की स्तुति करने लगे। नौमींडते ब्रवपुषे तदिडंबराय गुंजावतं सपरिपिक्षलसत्मुखाय बनसृजे कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मश्रिये मृगपदे पशुपांगुजाय। ब्रह्मा जी बोले, प्रभो एकमात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं, प्रभो मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। आहा, आपका यह शरीर वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल है और इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पा रहा है। प्रभो आपके गले में घोंघची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा आपके सिर पर मोर पंखों का मुकुट, इन सबकी कांति से आपके मुखमंडल पर वो अनोखी छटा छटक रही है। प्रभो बक्ष स्तर पर लटकती हुई माला और आपकी नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, आपकी बगल में बेंत और सिंगी और आपकी फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। प्रभो क्या आपका सुंदर गोपाल वेश है, आपके कमल से भी सुकोमल परम सुकुमार आपके चरण, कमल से भी परम सुकोमल आपके चरण और ये क्या सुंदर आपका गोपाल वेश। प्रभु मैं और कुछ नहीं जानता, बस अब तो इतना ही जानता हूं कि आपके इन चरणों पर न्योछावर हूं, बलिहार हूं प्रभु, आपके इन चरणों पर न्योछावर हूं मैं प्रभु। प्रभु आपने बड़ी भारी कृपा की मेरे ऊपर। अस्यापि देव वपुषो मदनोग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसेमहि तु वस्तुं मनसान्तरेण साक्षात्तमेव किमतात्मसुखानुभूते। ब्रह्मा जी कहते प्रभो ये आपकी क्या सुंदर छवि, अस्यापि देव वपसो मदनुग्रहस्य। हे प्रभो, हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की आशा अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है। आपकी यह इच्छा का चिन्मयी मूर्तमान स्वरूप है, स्वेच्छामयस्य। आपने अपनी ही इच्छा से प्रभो ये सुंदर सी विग्रह धारण किया है। मदनुग्रह से लगता है मेरे ऊपर ही आपने कृपा करने के लिए इतनी सुंदर छवि आपने प्रदर्शित की है, मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही प्रभो आपने ये प्रकट किया है। कौन कहता है ये पांच भौतिक शरीर है आपका, न तो भूतमय से कोपी, कौन कहता है ये पांच भौतिक है। प्रभु आपका ये शरीर अप्राकृत शुद्ध सत्वमय एकदम विशुद्ध आपका श्री विग्रह है। मैं या और कोई भी समाधि लगा करके भी आपके श्री विग्रह की महिमा को नहीं समझ सकते। तो आपके आत्मानंद अनुभव स्वरूप की महिमा को तो कोई जान ही क्या सकता है। कोई कितना ही समाधि लगा करके एकाग्रचित होकर समाधि लगाए है और आपको जानना चाहे, कोई भी नहीं जान सकता। प्रभु बड़ी भारी गलती हो गई हमसे। यहां श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्री से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण के रूप में अपनी लीलाओं में वे सामान्यतः अपनी ही आंखों से देखते हैं, अपने ही हाथों से छूते हैं और अपने ही कानों से सुनते हैं। इस तरह वे अत्यंत एवं मनोहर ग्वाल बाल की तरह भगवान आचरण करते हैं। श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अब तक भगवान विष्णु के स्वरूप के दर्शन किए थे, श्री राधे। जिस बछड़े को देखते उसमें भगवान श्री विष्णु के दर्शन होते, ग्वालों में भगवान के दर्शन होते, पर अब तक ब्रह्मा जी को ये गोपाल वेश जो दो भुज भगवान श्री कृष्ण का सुंदर जो श्री विग्रह का रूप देखा, ब्रह्मा जी गदगद हो गए और बोले प्रभु अरे वो लोग मूर्ख हैं जो केवल ज्ञान का प्रयास करके नाना प्रकार के उद्योग करते हैं आपको प्राप्त करने के लिए। आपकी कितनी सुंदर छवि है, इस सुंदर छवि को लोग नहीं समझते। बोले ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाक्मनोहि ये प्रायसो जित जितो अपि असीतै त्रैलोक्यम्। ब्रह्मा जी कहते प्रभो जो लोग ज्ञान का प्रयास छोड़कर, ज्ञान का प्रयत्न न करके अपने स्थान पर ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं, अपने स्थान पर स्थित रह के झांसी में रह करके, उन्हें जरूरत नहीं कि कहीं वृंदावन में जाएं या मथुरा में जाएं या बद्रीनाथ जाएं, कहां जाएं। बोले स्थाने स्थित श्रुतिगताम, जो व्यक्ति अपने स्थान पर ही रह करके और श्रुतिगताम सत्संग करता है, संतों के मुख से आपकी चर्चा सुनता है, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर आपकी कथाओं का आदर करता है तो वह व्यक्ति प्रभु, यद्यपि आप तीनों लोकों में अजय हैं, कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्संग करता है, आपके प्रिय भक्तों के मुख से सुनता है, तो ऐसा व्यक्ति सत्संग करके वो आपको जीत लेता है। यद्यपि आप तीनों लोकों में अजय हैं, आपको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आपके भक्त सत्संग के माध्यम से आपको भी जीत लेते हैं। कितनी सत्संग की भारी महिमा है, सत्संग की बहुत भारी महिमा है। एक बार वर्णन आता है कि जब प्रचेता अपने पिता प्राचीन भरि की आज्ञा को श्रोधारी करके और वन में तपस्या करने के लिए जा रही थी, तो मार्ग में उन्हें बहुत बड़ा एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में देखते एक बड़े दिव्य पुरुष उसमें से निकल पड़े, बड़ा ही दिव्य तेज था। जब प्रचेताओं ने गौर से देखा तो भगवान भोलेनाथ थे। भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ, प्रचेताओं ने बड़ी गौर से देखा, ये तो भगवान शिवजी लग रहे हैं, इनकी तो हमने कोई आराधना नहीं की, इनका स्मरण भी नहीं किया, इनका भजन भी कभी नहीं करते हम, इनके नाम की एक भी माला तो हमने जपी नहीं कभी, पर उन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा कैसे कर दी, हमको दर्शन दे दिया। जो इनके भक्त होते, इनकी भक्ति करते, इनकी खूब पूजा करते हैं, दर्शन तो उन लोगों को भी नहीं देते। जो वस्तु मांगते वो तो उनको दे देते हैं, भोलेनाथ लो जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ, पर मेरा डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरे प्रभु का भजन करने दो। इनके भक्त भी इनसे कुछ मांगते हैं तो संसार की वस्तु जरूर दे देते, लेकिन दर्शन उनको भी नहीं देते। पर भोलेनाथ ने हमारे ऊपर ऐसे अनायास अचानक इतनी कृपा कैसे कर दी। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया दसों प्रचेताओं ने, दस भाई थे वो प्रचेता, दसों के नाम प्रचेता थे। प्रणाम किया भोलेनाथ को, प्रभु आपने बड़ी भारी कृपा की, हमें दर्शन आपने क्यों दिए प्रभु, ये तो कृपा ही किया आपने प्रभु। भगवान भोलेनाथ बोले, देखो प्रचेताओं, यह परम रंग साक्षात त्रिगुणां जीव संगितं वासुदेव भगवंतं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। भगवान भोलेनाथ बोले, देखो प्रचेताओं, जो व्यक्ति त्रिगुणातीत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, उनकी भक्ति करते, उनकी आराधना करते हैं, स प्रियो हि मे, वासुदेव भगवंतम प्रपन्नः, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, सब प्रियो है मे, वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। आप भगवान श्री हरि की, भगवान श्री नारायण की आराधना करने के लिए जा रहे हो ना, यही बात है ना। बोले हाँ महाराज, हाँ भगवान, इसलिए हमने आपको दर्शन दिया है, जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है हमें बहुत प्रिय होता है वो। वासुदेव भगवंतः प्रपन्नः स प्रियो हि मे, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो व्यक्ति जाता है मुझे बहुत प्रिय लगता है वो। और देखो तुम उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हो, तो इसलिए मैं प्रकट हुआ हूं, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सुंदर मार्ग बताऊंगा, जिससे आपको कन्हैया की प्राप्ति हो ही जाएगी निश्चित रूप से। तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत सुंदर उनको स्तुति बताई भगवान की प्राप्त करने की। श्री भागवत के चौथे स्कंद में रुद्र गीत कहते हैं, रुद्र गीत बड़ा ही सुंदर है। जो रुद्र गीत का रोज पाठ करता है, भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा किया हुआ वो स्तुति है। प्रचेता भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके जब आगे बढ़े, तो समुद्र में जाकर के उन्होंने दसों ने बड़ी भारी तपस्या की। 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे समुद्र में, ऐसा लिखा है भागवत में। पहले बहुत भारी तपस्याएं करनी पड़ती थी, लेकिन आज के कलयुग में कितना सरल भगवान ने कर दिया है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा। कितना सरल साधन कर दिया है कलयुग में, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम जपने से मनुष्य का परम कल्याण हो जाता है। और कोई साधन न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति गतिर अन्यथा, और कोई साधन है ही नहीं, और कोई गति है ही नहीं, और कोई गति है ही नहीं, तीन बार जोर दे के मना किया है। तो कलयुग में केवल हरि नाम, इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कलयुग केवल नाम धारा। अगर और किसी साधन की आवश्यकता होती तो बाबा केवल शब्द नहीं लगाते उसमें, कलयुग केवल नाम धारा बस, और कोई साधन की आवश्यकता नहीं। योग करें कि ध्यान करें कि यज्ञ करें क्या करें, कोई आवश्यकता नहीं, कलयुग केवल नाम धारा। इसलिए बृहद नारदी प्राण में कहा है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, बस। लेकिन पहले के युगों में बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ती थी। प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की समुद्र में, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, प्रचेताओं वरदान मांगो, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। प्रचेता बोले प्रभो अब तो वरदान की आवश्यकता रही नहीं, आपके दर्शन हो गए, अब ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया हमको, अब कुछ बाकी मांगने को रहा ही नहीं। भगवान बोले नहीं फिर भी मांगो, देखो तुम नहीं मांग रहे, उससे पहले मैं आपको देता हूं कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहां भेजा था तपस्या करने के लिए, कि तपस्या करके विवाह करना और फिर सृष्टि की वृद्धि करनी है, तो इसलिए आप ये मरसा नाम की एक कन्या है जो कंडू ऋषि की तपस्या को डिगाने के लिए ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा भेजी थी इंद्र ने। ये कंडू नाम के ऋषि थे, बहुत भारी तपस्या कर रहे थे। इंद्र भयभीत हो जाता है कोई ज्यादा तपस्या करे तो कहीं हमारी गद्दी को नहीं ले ले। ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा आई, बाबा को डिगा करके चली गई, ये कन्या उत्पन्न करके, कन्या ही छोड़ के चली गई। वो मरिसा उसका नाम है, वृक्षों ने उसका पालन पोषण किया है, और उसके साथ आप दसों भाई विवाह करना, क्योंकि आप दसों भाइयों को आपस में प्रेम है ना, कोई झगड़ा नहीं होगा, दसों भाई उसके साथ विवाह करना और फिर सृष्टि संतति उत्पन्न करना जिससे सृष्टि की वृद्धि होगी। प्रचेता बोले प्रभु घर गृहस्थी में क्यों फंसाती हो हमें, जो एक बार घर गृहस्थी में फंस जाए फिर निकल नहीं पाता वो, इसमें मत फंसाओ हमें। भगवान बोले प्रचिता ऐसी बात नहीं है, गृहे सुवस्ताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मधुवार्तायात यामानाम न बंधाय ग्रहमतः। भगवान का प्रचेताव ऐसी बात नहीं है, गृहस्थी बंधन का कारण है जरूर, लेकिन गारंटी ऐसी बात नहीं कि गृहस्थी बंधन का कारण बन ही जाए, ग्रस्त रहते हुए भी जीव मुक्त हो सकता है। गृहेषु अवस्थां चापि पुंसाम कुशल कर्मणां, जो व्यक्ति अपने कार्य में कुशल है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। कैसे? बोली मधुवार्तायात यामानाम, जो हमेशा मेरी कथाओं वार्ताओं को सुनता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, आठ याम मेरा चिंतन करता है, न बंधाय ग्रहमतः, उसे गृहस्थी भी बंधन का कारण नहीं बनती। इसलिए अभी तुम ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करो, जब समय आए तब ग्रस्थी को छोड़ देना, पर अभी आप ग्रस्थी में प्रवेश करो, इसके साथ विवाह कर लेना। और देखो ये तो मैंने अपने आप तुमको दिया है, तुम कुछ तो मांगो। तो परिचिता बोले, प्रभु हमको आप क्यों लालच में डाल रहे हो? अब हम क्या मांगे? कुछ हमें संसार में दिखता ही नहीं जिसको हम मांगे। अब तो आप ऐसा हमसे बता रहे मानो जो कोई भ्रमर एक बार पारिजात वृक्ष का सेवन कर ले, जो भ्रमर कल्प वृक्ष का सेवन करे पारिजात वृक्ष का, तो जो भ्रमर पारिजात वृक्ष का सेवन कर चुका है क्या वो कांटे वाले बबूल के पेड़ पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो प्रभो तदंग्र मूलम, जब आपके चरण कमल हमको प्राप्त हो गए तो अब संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी हम इच्छा करें? भगवान बोले, ठीक है तुम तो इच्छा नहीं करते, पर मैं तो इच्छा करता हूं, कुछ मांगो। ये भगवान की विशेषता है। भगवान इतने दयालु हैं और इतने उदार हैं देने में कि लेते कम हैं और देते जा रहे, उनकी विशेषता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि, थोड़ा लेते हैं, और महतो भयात्, महान संकटों से रक्षा करते हैं। कोई थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करता है तो महान संकटों से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कुछ मांगो। तो प्रचेता बोले, ठीक है प्रभु आप देना ही चाहते हो तो यावते माया सृष्टा भ्रमाम ई कर्म भी तावत भगवत संगानाम। ठीक है प्रभु आप देना ही चाहते हो तो हम ये मांगते हैं कि हम अपने कर्मों के वशीभूत होकर के शरीर त्याग करके किसी भी योनि में जाएं, क्योंकि शरीर त्याग के जन्म तो लेना ही पड़ेगा। हम किसी भी योनि में जाएं, पर जिस योनि में जाएं, जहां भी जाएं, तावत भगवत प्रसंगानाम स्यातः संगी भवो भवे भवे। हम जिस जिस योनि में जाएं, जहां जहां भी जाएं, वहां 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 प्रभु आपके भक्तों का हमें संग मिलता रहे। केवल सत्संग चाहते हैं हम प्रभु। कितनी भारी महिमा है सत्संग की। प्रचेता क्या मांग रहे हैं? कि हम अपने कर्मों के वशीभूत होकर के किसी भी योनि में कहीं भी जन्म लें, जहां भी जाएं, चाहे भले ही नरक में जाना पड़े, वहां भी आपके भक्तों के हमको दर्शन मिलते रहे, आपके भक्तों का संग हमको मिलता रहे। हम नरकों में जाने को तैयार हैं, कोई चिंता नहीं, पर हमें भक्तों का संग मिलता रहे, वहां सत्संग मिले हमें। भगवान बोले, सत्संग इतनी भारी महिमा है? अरे और कुछ बड़ी चीज मांगते हो भाई? तुमने सत्संग मांगा उसमें क्या मिलेगा? इससे कुछ बड़ी चीज मांगो ना। प्रचेता बोले, प्रभु खूब हम देख रहे हैं ध्यान से, सत्संग के बराबर तीनों लोकों में कोई वस्तु हमको दिखती ही नहीं। तुलिया में लवे ना पी, तुलिया में लवे ना पी, न स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगानाम मर्त्यानाम किमुतासिस। प्रचेता कहते हैं, प्रभु आप कहते हो कि सत्संग से बढ़कर के कोई और वस्तु मांगो? श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आप कहते हो सत्संग में क्या मिलेगा, इससे बड़ी कोई वस्तु मांगो? तो प्रभु सत्संग से बढ़कर के हमें यहां तक कि तुल्यम लवे न पी, क्षण मात्र साधु के संग के बराबर, तुलयामी यानी क्षण मात्र के साधु संग की तुलना में, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न तो उसके समान स्वर्ग का राज्य है, और यहां तक कि मोक्ष भी कोई गिनती में नहीं है। भगवत संग संगानाम मर्त्यानाम की मुताशिस। अरे भक्तों के संग के बराबर यानी सत्संग के बराबर संसार में है क्या, तीनों लोकों में है कोई वस्तु नहीं है, न स्वर्ग है न मोक्ष भी, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो संसार का सार्वभौम राज्य तो किस गिनती में है प्रभु? भगवान बोले, क्या मिलेगा सत्संग से? अरे प्रभु हमारे स्वयं अनुभव की बात है। बोले, वयम तो साक्षात भगवन भवस्य प्रियस्य सख्यू क्षण संगमेन सुदोष किस्स भवस्य मृत्यो सक्तमं त्वाद गतिं गता स्मः। प्रभु आपके तो सत्संग से क्या मिलेगा, ये हमारे स्वयं अनुभव की बात है। वयम तो साक्षात भगवन वयस्य। हे प्रभु ये स्वयं हमारे अनुभव की बात है, हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। जो प्रिय से सख्यु क्षण संग में ना, जो आपके प्रिय भक्त हैं भगवान शिव, जो महाभागवतों में सबसे श्रेष्ठ महाभागवत हैं भोलेनाथ, जो आपके सबसे प्रिय हैं, उनका क्षण मात्र का ही संग प्राप्त हुआ था, क्षण मात्र का ही सत्संग हुआ था उनसे हमें, और उन्हीं के सत्संग का प्रभाव ये प्रभु आपकी प्राप्ति हो गई। सत्संग में हो सकती है कि कन्हैया की प्राप्ति हो जाती है। त्यां ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में स्थित रहते हुए केवल सत्संग करते हैं और आपकी कथाओं को वार्ताओं को मन से वाणी से हृदय से उनको आदर करते हैं, तो अपने स्थान पर रहते हुए भी वो यद्यपि आप त्रिलोकी में अजय हो और ऐसे सत्संगी भक्तों के द्वारा आप जीत लिए जाते हो, यह है सत्संग की महिमा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तनवाक मनोभी शब्दों की उन्होंने व्याख्या की है, तनवाक मनोभी वो नमंत के साथ जोड़ते हुए उसकी व्याख्या करते हैं। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हैं, मन से वाणी से और कर्म से भगवान की कथाओं का आदर करते हैं तो भगवान के लिए बहुत प्रिय बन जाते हैं। और ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, प्रभु बोले श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो पृष्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलैव शिष्यते नान्यथा स्थूल तुषावघातिना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभो आत्म साक्षात्कार का मार्ग तो सबसे सर्वोत्तम मार्ग आपकी भक्ति ही है। भले ही कोई ज्ञान योग करे चाहे ध्यान योग करे, पर आत्म साक्षात्कार का जो सर्वोत्तम मार्ग है प्रभो वो एकमात्र आपकी भक्ति है। श्रेय सुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, श्रेय आपकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके और ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो क्लिश्यन्ति केवल क्लेश ही क्लेश उठाता है, उसे केवल क्लेश ही क्लेश उठाना होगा, वांछित फल तो मिल नहीं पाएगा। क्या मिलेगा? केवल क्लेश ही क्लेश मिलेगा। जिस तरह थोती भूसी कूटने वाले को सुबह से शाम तक थोती भूसी कूटना रहे, उसमें अन्न का दाना एक मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही श्रम मिलेगा उसे, अन्न का दाना तो मिलेगा नहीं। उसी प्रकार जो आपकी भक्ति को छोड़ के ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, योग मार्ग पर चलते हैं, उन्हें परिश्रम ही परिश्रम मिलता है, आपकी प्राप्ति तो होती नहीं। बोले पुरे भूमन बहवो योगिना तदर्पिति निज कर्म लब्धया विबोध्य भक्तेव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजोचित ते गतिं परम। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभो पुरे भुवन बहवोपयोगिनः, पहले भी बड़े बड़े योगी हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, जब उन्हें अपने योग से और ज्ञान के प्रयास से आपकी प्राप्ति नहीं हुई तो तदर्पिते निज कर्म लब्ध, तो उन्होंने अपने सारे कर्मों को आप में अर्पित करके और आपके शरणागत होकर के आपके भक्तों से आपकी कथाओं का श्रवण करके फिर आपकी भक्ति को प्राप्त किया, तब आपकी भक्ति को प्राप्त करके बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो गए वो, क्योंकि आपकी प्राप्ति एकमात्र भक्ति से ही होती है। और कहते हैं तत्तेनुकंपां सुसुमीक्षमाणो भुञ्जानैवातकृतं विपाकं हृदवाक वपुभिर् विदधन् नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे सदैव। हे प्रभु, जो व्यक्ति क्षण क्षण हर समय आपकी अनुकंपा का अनुभव करता रहता है, दुख मिला भगवान की कृपा है, ये तो हम अपने विगत कर्मों को भोग रहे हैं, भगवान ने दुख दिया है हमारे ऊपर, कृपा की है जिससे हम पापों से छूट जाएंगे, सुख दिया है इसके लायक नहीं थे, भगवान ने कृपा करके हमको सुख दे दिया, यानी हर क्षण क्षण आपकी अनुकंपा का जो अनुभव करते रहते हैं और हृदय से वाणी से मन से आपको नमस्कार करते रहते हैं प्रभु, ऐसे भक्त जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो परम पद के ऐसे अधिकारी बन जाते हैं जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी अनायास बन जाता है। एक पिता का पुत्र होता है तो पिता चले जाने के बाद सारी संपत्ति का अधिकारी वही बन जाता है, अपने आप बन जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। उसी प्रकार है प्रभु, जो व्यक्ति हर क्षण हर पल आपकी आपकी अनुकंपा का अनुभव करता है हर समय, तो वो व्यक्ति परम पद का अधिकारी ऐसे बन जाता है जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का। परम पद, परम पद क्या है? परम पद वो है कि यहां जाकर के फिर पद पद पर कोई आपत्ति नहीं आती, पदम पदम यत विपदाम न तेषां, वो परम पद है, तो उस परम पद की प्राप्ति उसे हो जाती है। आगे वर्णन करते हैं, पश्ये समीर आर्य अनंत याद्ये परात्मनि त्वयपि माये माये मायां वितत् एक्ष्तुम आत्मवैभवम् यहं क्या नेक्षमिवार्चिराग्नौ। हे प्रभु, मेरी मूर्खता तो देखो, मैं कितना मूर्ख हूं जो मैंने आपकी परीक्षा लेनो चाही प्रभु, अरे मैं आपके सामने हूं ही क्या, आप मायापति पर मैंने अपनी माया डालनो चाही, मेरी कितनी भारी मूर्खता है। प्रभु, जिस प्रकार एक विशाल अग्नि के सामने एक चिनगारी किस गिनती में है, मैं तो आपके सामने एक विशाल अग्नि की चिनगारी के समान हूं, पर प्रभु ये मेरी मूर्खता है जो मैंने आप पर अपनी माया फैला करके और आपकी परीक्षा लेना चाही।
अतः क्षमस्याच्युत मेरजो भुवो यजानता प्रथगी समानिनः अजावलि पांध तमोंध चक्षुषः एषो न कंपयो मैनाथवानिति।
अतः क्षमस्याच्युत में रजो भवो, हे प्रभो आखिर में रजोगुण से तो उत्पन्न हुआ हूं ना, प्रभो मेरे अपराध को क्षमा करना, मैं जानता नहीं था, अनजान में ये सोच रहा था कि मैं ही सारी सृष्टि का रचना करने वाला हूं, लगता है मैं ही ब्रह्मांड का स्वामी हूं, प्रभु आपकी माया से मैं ऐसा मोहित हो गया कि अपने कोई आपसे अलग ईश्वर समझ बैठा, प्रभु ये मेरी अज्ञानता ही है, पर प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरी ऐसी कुटिलता देख करके भी और आप अपने स्वभाववश मुझे क्षमा कर देंगे, प्रभु आप मुझे क्षमा कर देना। और कहते हैं आहा
अहो अति धन्या ब्रज गोरमण्य संन्यामृतं पीतमतीवते मुदा यासां विभोवस्य तरात्मजात्मना यत्र तैयद्यापि न चालमध्वरः।
ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभो आहा, ये ब्रज की गोपियां कितनी धन्य हैं। अहो अति धन्या ब्रज गौरवण्या, ये ब्रज की गायें कितनी भाग्यशालिनी हैं, ये ब्रज की गोपियां कितनी भाग्यशालिनी हैं। स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा, आपने बड़े उत्साह के साथ एक वर्ष सब गैयों के बछड़ा बन के आपने दूध पिया है, सब गोपियों के आपने बालक बन करके ग्वाल वाल के उनका एक वर्ष तक बड़े प्रेम के साथ उनका स्तनपान किया है। ये धन्य है ब्रज की गोपियां हैं, धन्य है ब्रज की गैयाएं जिनके बछड़े बनकर के आपने स्तनपान किया है, और ऐसे स्तनपान किया है बड़े प्रेम के साथ अमृत के समान। प्रभु सृष्टि से लेकर अब तक बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा आपको कोई तृप्त नहीं कर पाया, बड़े बड़े यज्ञों से कोई आपको तृप्त नहीं कर पाया, पर आप इन ब्रज की गोपियों का ब्रज की गैयों का स्तनपान इतने उत्साह से किया है, इतना प्रेम के साथ किया है, मानो अमृत का पान कर रहे हैं।
ओहो भाग्यम, ओहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसम यत्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम।
ब्रह्मा जी कहते हैं आहा, इन ब्रजवासियों का अहो भाग्य है, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। ये नंद ब्रज, नंद के ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं ब्रजवासी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। इनके भाग्य की सराहना कौन से शब्द में की जाए बताओ, जिनके मित्र और जिनके हितैषी, जिनके प्रिय साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम है, वो इनके मित्र बने हुए हैं। कभी वो इनके कंधे पर बैठते हैं और कभी आप उनके कंधे पर बैठते हो। प्रभु इन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना कौन से शब्दों में की जाए, कौन से शब्दों में की जाए। और प्रभु मैं भी यही सौभाग्य चाहता हूं। भगवान बोले क्या सौभाग्य चाहते हो?
बोले तदभूर भाग्यम ही जन्म किमपि अटव्यम यद गोकुले अपि कतमांग्र रजो अभिषेकम यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद तद्याप्य पद रज श्रुतिमृग्यमेव।
ब्रह्मा जी कहते प्रभो इस ब्रज भूमि में, इस ब्रज भूमि के किसी भी वन में और विशेषकर गोकुल में किसी भी योनि में मेरा जन्म हो जाए। ब्रह्मा जी क्या इच्छा कर रहे हैं कि इस ब्रज भूमि में किसी भी वन में, जो 12 वन है ब्रज भूमि में, तो किसी भी वन में अर्थात विशेषकर गोकुल में मेरा किसी भी योनि में जन्म हो जाए। मैं ये नहीं कहता मुझे मनुष्य का ही जन्म मिले, चाहे भले ही मुझे वृक्ष का जन्म मिले, चाहे पशु का जन्म मिले, चाहे पक्षी का जन्म मिले, चाहे भले ही पत्थर ही बनना पड़े प्रभु, पर मैं जो भी कुछ बनूं तो मैं मुझे जन्म मिले इस ब्रज में और गोकुल में, तो मेरे लिए सौभाग्य की सबसे बड़ी बात यही होगी प्रभु। इससे क्या सौभाग्य होगा? बोले प्रभु यहां पर जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी भक्तों की चरणों की धूल पड़ ही जाएगी, आपके किसी न किसी प्रेमी भक्तों के चरणों की धूल पड़ ही जाएगी। ये नहीं कह रहे आपके चरणों की धूल, अरे आपके प्रेमी भक्तों की धूल पड़ जाएगी प्रभु, बस उसी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। आपके जो प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। उनके चरणों की धूलि पड़ना आपके चरणों की धूलि के समान है। और प्रभु आपके चरणों की धूलि को तो आज तक श्रुतियां भी ढूंढ रही हैं, श्रुतियां भी आपके चरणों की धूलि को ढूंढती रहती है।
राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है।
सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है।
सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है।
एक बूंद जो मिल जाए,
एक बूंद जो मिल जाए,
एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए।
राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
चंचल है जितना इसे समझाऊं,
ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे जन करो।
ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं।
मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करो।
कितना इसे समझाओ,
कितना इसे समझाओ,
कितना इसे समझाओ, उतना ही न चल जाए।
राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। लाठ है इस जीवन की, बस एक तमन्ना है
श्यामा इस जीवन की, बस एक तमन्ना है
श्यामा इस जीवन की, बस एक तमन्ना है
तुम सामने हो मेरे,
तुम सामने हो मेरे,
तुम सामने हो मेरे, मेरा तुम निकल जाए
लाठे तेरे चरणों की।
ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपके या ब्रज में मेरो जन्म कहीं भी किसी भी योनि में है जाए तो अनायास आपके किसी प्रेमी भक्त के गोपिन की राधा रानी की अन्य किसी के चरणों की धूल तो मेरे ऊपर पड़ ही जाएगी प्रभु, बस मेरा यही सौभाग्य होगा कि बस मेरा भी जन्म ब्रज में हो जाए। और उद्धव जी ने यही मांगा है,
आसामहो चरण रेणु दिशामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषदीनां, या दुस्थे स्वजनम आर्य पथं चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतमज्ञैव।
उद्धव जी ने यही प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरा जन्म हो तो ब्रज में हो, आसाम हो चरण रेणु जो साम हम श्याम, जो वहां जन्म लेने से चाहे भले ही गुल्म लतोषधि नाम, चाहे भले ही वृक्ष और घास कुछ भी मैं बन जाऊं ब्रज में, जिससे कम से कम आपके प्रेमी भक्तों की चरणों की धूली मेरे ऊपर पड़ती रहेगी। तो ब्रज की धूली आज भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब इस ब्रज में लीलाएं की और लीलाओं को पूर्ण करके अपने निज लोक गोलोक धाम को चले गए तो बहुत सारी चीजों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया भगवान की लीला स्थलियों को, लेकिन तीन चीज अभी भी हैं, तीन चीज अभी भी ब्रज में मौजूद हैं, ब्रज रज और यमुना जी और गिरिराज जी, ये तीनों चीज अभी भी मौजूद हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की और कहा, हे प्रभो, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि जो दोष हैं ये चोरों के समान सर्वस्व हरण करते रहते हैं, तभी तक घर के संबंधी कैदी की तरह संबंध के मोह में जकड़े रहते हैं, और तभी तक ये मोह की बेड़ियां हैं जकड़े रहती हैं जब तक जीव आपका न हो जाए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभो मैं देख रहा हूं कि आप ब्रजवासियों को जो इतना आपसे प्रेम करते हैं, इस प्रेम के बदले में आप क्या फल देंगे इन्हें, आप इनको कौन सा फल देंगे? अरे प्रभु, आपने एक पूतना को जो आपको स्तनपान कराने आई मारने की नियत से, मारने की इच्छा से, उसको आपने अपना धाम दे दिया, इन ब्रजवासियों को उससे बढ़कर और कौन सी वस्तु उसको आप देंगे? प्रभु धन्य है ये ब्रजवासी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हम कृष्ण के बारे में जानते हैं, वो ऐसा कहते रहे लेकिन आपके बारे में प्रभो कोई कुछ जान नहीं सकता, यहां तक अनंत शेष भगवान भी अपने अनंत मुखों से आपका गुणगान करते रहते हैं, वो भी आपकी महिमा को नहीं पूर्ण रूप से गा पाते। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और बोले हे प्रभु, बस अब मैं यही चाहता हूं कि मैं हमेशा जब तक ये सूरज चांद रहे तब तक मैं आपको बार बार नमस्कार करता रहूं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं।
कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है,
ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, नाम है। जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है,
यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है,
यशोदा जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है,
ऐसे श्री गोपाल को,
ऐसे श्री गोपाल को मेरा
बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है,
ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है।
कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है,
राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है,
राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है,
राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है,
ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है,
ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है,
कृष्ण जिनका नाम है,
गोकुल जिनका धाम है।
ब्रह्मा जी बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, और गोपाल भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा जी फिर उनसे आज्ञा लेकर के अपने लोक ब्रह्म लोक को चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन अब भगवान कितने कृपालु हैं, जो व्यक्ति ऐसे भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है वो बड़ी आसानी से संसार सागर से पार हो जाता है। बोले समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य सो मुरारे भवां बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदां तेषां।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, अरे जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के उन चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है, कौन से चरण रूपी नौका का? बोले महत पदम पुण्य सो मुरारे। जो बड़े बड़े महाभागवतों के द्वारा पूजनीय वंदनीय जो चरण है भगवान के, उन चरण रूपी नौका का जो आश्रय ले लेते हैं, ऐसे बुद्धिजीव बड़ी आसानी से संसार सागर से पार हो जाते हैं। इस संसार सागर को कैसे पार कर जाते हैं? बोले वत्स पदम, बछड़े के खुर के गड्ढे के समान बड़ी आसानी से इसको पार कर जाते हैं। पार करके कहां जाते हैं? बोले परम पदम, परम पद की प्राप्ति करते हैं। वहां क्या विशेषता है? बोले पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, वहां पर पद पद पर कोई आपत्ति है ही नहीं। और इस संसार में एक एक पद पर आपत्ति है, पता नहीं कब कौन सा संकट सामने आके खड़ा हो जाए, एक सेकंड का किसी को पता नहीं। यहां तो आपत्ति पर आपत्ति, संकट पर संकट, दुख पर दुख ही संसार में है, और पद पद पर दुख भरे हुए हैं। लेकिन जो परम पद की प्राप्ति कर लेता है तो वहां किसी प्रकार का कष्ट और दुख नहीं है। और संसार में क्या है? दुख ही दुख है, इसलिए इसको बोलते हैं कुंट लोक। कुंट माने चिंताएं, और इससे परे है वैकुंठ लोक, बेमन रहित। कुंट माने चिंताएं, जो चिंताओं से दुखों से रहता वो है वैकुंठ लोक। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं संसार की कोई वस्तु न चाह करके वो केवल उसी परम पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। यह पदम पदम यत विपदाम न तेषां, वहां किसी प्रकार कोई आपत्ति है ही नहीं, कोई दुख नहीं है। और चार दुख तो यहां सबको लगे हुए हैं, कौन कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार दुख सभी को लगे हुए। और परम पद की प्राप्ति कर ले तो चारों दुखों में से कोई नहीं रहता, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, कभी बूढ़े होते नहीं, कभी रोग शरीर में लगता नहीं, है ना, चारों दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं कृष्ण का भजन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये हरि नाम का जप करके उस वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेते हैं भगवत धाम की। यहां किसी प्रकार का कोई कष्ट और दुख नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, भगवान अपने गैया बछड़ाओं को लेकर के आए, और भगवान के सखाओं ने एक वर्ष के बाद अपने घर पर यह बात बताई कि आज तो कन्हैया ने बहुत बड़े अजगर को वध कियो, है ना। एक साल के बाद बताई, क्यों? क्योंकि एक साल तक तो ब्रह्मा जी के पास ही रहते वो बछड़े, वो ग्वाल वाल सभी। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, अब भगवान ने छठे वर्ष में प्रवेश किया, भगवान अब छठे वर्ष में प्रवेश करते हैं। जब छठे वर्ष में आए तो उनकी इच्छा, भाई अब तो हम बड़े हैं गए ना, अब तो हम गैया चराओ करेंगे, ऐसी मन में इच्छा हुई। और अपनी मैया से बोले, मैया अब हम बड़े हैं गए ना, अब हम गैया चराओ करेंगे। मैया बोली, लाला देख गैया बहुत लात मारती हैं, उनके सींग बहुत पहने, सींग भी मारती है, मरखनी है, लतखनी है, अभी तू बालक है। नहीं मैया, अब हम गैया चराओ करेंगे, अब तुम बाबा से कहो, अब बाबा हमको गैया चराने के लिए भेजें। तो जीव गोस्वामी गोपाल चंपू बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि एक दिन नंद महाराज अपने सभा में बैठे हुए, तो तो उपनंद से वो कुछ पूछने लगे। उपनंद में देख रहा था कि बहुत देर से आप कृष्ण के साथ में कुछ बातें कर रही थी। लाला कन्हैया कुछ कह रहा था क्या? उपनंद बोले, नहीं महाराज, नहीं नहीं, बहुत देर से तुम्हारी बातें चल रही हैं। आजकल वो हमसे बात कम करता, हमसे कुछ शर्माने लगता है, और तुमसे बहुत बातें करता है। क्या बातें कर रहा था वो? तो उपनंद बोले, महाराज क्या बताएं, वो कई दिन से हमारे पीछे लगा हुआ है। वो कहता है कि नंद महाराज से को नंद बाबा से, और अब हम दोनों भैया कृष्ण बलराम को बड़े है चुके हैं, तो नंद बाबा बड़े बूढ़े हैं, वो गैया चराए जाए हैं, तो हमें बहुत भारी चिंता लगती है, हमें दुख लगता है, हमारे होते हुए वो गैया चराने जाते हैं। अब नंद बाबा से कह दो हम दोनों भैया गौ संरक्षण स्वयं अपने आप कर लेंगे दोनों भाई। तो नंद महाराज से उपनंद बोले, कई दिन से कन्हैया ऐसे कह रहे हैं, पर मैंने आपसे कही नहीं थी, आपने पूछा है तो आपको बता रहा हूं मैं। तो नंद महाराज को हंसी आ गई, देखो कन्हैया ऐसी बातें करता है। इधर एक दिन उपनंद की पत्नी यशोदा मैया से बोली, यशोदा जी सुबह सुबह कन्हैया लाला कहां जा रहे हो? यशोदा बोली, क्या बताऊं, ये अपने किसी सखा मित्र के पास जा रहा है, आजकल ही हमसे अब शर्माता है, और बार तो इसको मैं स्नान कराती, उबटन करती और इसको बढ़िया श्रृंगार वस्त्र पहनाती, अब तो हमसे उबटन भी नहीं करवाता और ना हमसे श्रृंगार करवाता, अब हमसे कुछ शर्माने लगा ही है, थोड़ा कुछ बड़ा हो गया है ना, तो हमसे शर्माता है। उपनंद की पत्नी हंसने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भारी इच्छा, में गैया चराए जाऊं। एक दिन सुबह ही सुबह उठे और जहां गौशाला थी, भगवान श्याम सुंदर उस गौशाला में प्रवेश कर गए। गौशाला में उस समय गैयन की दुवे की घर घर की बड़ी भारी बड़ी सुंदर आवाज आ रही थी, गैया सब दुई जा रही थी। जैसे ही भगवान ने गौशाला में प्रवेश किया, सारी गायें कान खड़े करके देखने लगी इधर उधर। तो वहां जो ग्वाले दूध काट रहे थे, उन्होंने देखा चारों तरफ कौन है, तो एक बड़े बूढ़े गोप थे जो नंद महाराज की गौशाला में बहुत समय से सेवा कर रहे थे गैयन की। नंद महाराज के बहुत प्रिय थे वो, बड़े बूढ़े थे। कन्हैया जी उन्हीं के पास पहुंच गए और जाकर के कान पे मुंह धर के कहते हैं, काका ये गैया दूबो हमें भी सिखाओगे क्या? जैसी बड़ी मधुर वाणी में काका कहा, तो उनके कान में ऐसा लगा अमृत ही उड़ेल दिया क्या। जब पीछे को मुड़ के देखा तो नीलमणि श्याम सुंदर खड़े हुए हैं, उनको देख करके बड़ा विभोर हो गया, अपना जीवन धन्य समझा उसने। अब तो वो अपने शरीर का होश आभास भी भूल गया भगवान श्याम सुंदर की सुंदर छवि को देख करके, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, प्रेम की आंसू की धारा। भगवान श्याम सुंदर अपने नन्ने नन्ने कोमल हाथों से उनकी आंखों से आंसू को पोंछने लगे। काका मैं भी गाय दुहनो सीखूंगा ना, मुको गाय दुहबो सिखाओ। जब उस गोप को कुछ होश आया, बाह्य होश आया, तो बोला, लाला अब तो सभी गैया दुई जा चुकी हैं, अब कोई गाय दुहने को बाकी नहीं, इससे हम सिखाएं। अच्छा तो ठीक है, कल आऊं फिर मैं। अब वो गोप तो कुछ नहीं बोल पा रहे स्वयं, अच्छा ठीक कल आता हूं मैं, मेरी मैया देखती होगी, मैं चलता हूं, कल आऊंगा सुबह बाबा। ऐसे कहकर के चले जाते हैं, और वो गोप बड़ा ही एकदम इतना प्रेम में विभोर हो जाता है, बस वही आवाज गूंजती रहती, कल आऊंगा। अब बुलाना, कल आएगा तो कल उसको गाय दोहना सिखाऊंगा। इधर कन्हैया मैया से मछले, मैया अब मैं गैया दुबे के लिए जाऊंगो, मिले दोहनी दो दोहनी, जिद पकड़ जाते हैं कन्हैया। नंद बाबा से कहती है सुधा मैया, तो नंद बाबा बोले लाला देख तो खूं गैया दुबे मैं सिखाऊंगा ना गैया बहुत, नहीं नहीं मैं काका से बात करके आया हूं वो सिखा देंगे हमारे लिए। तो भगवान श्याम सुंदर सुबह होते ही उस ग्वाल के पास जाते हैं गौशाला में, और गोप ने जो सीधी सादी गायें थी वो धोने के लिए कुछ रोक ली थी उनको सिखाने के लिए। तो भगवान श्याम सुंदर धोनी लेकर के जब गैया दुबे के लिए बैठे तो गायों का दूध अपने आप ही निकलने लगा, इतना वात्सल्य प्रेम उमड़ा गैयन को। तो इस प्रकार भगवान गैया दूना सीखे, कृष्ण और बलराम दोनों जब छठे वर्ष में प्रवेश किया तो अब आज्ञा ले रहे हैं नंद महाराज से कि अब हम गैया चराए को जाएंगे बाबा। नंद महाराज बोले लाला जो गैया चराए के लिए कोई बढ़िया मुहूर्त देखना पड़े, अच्छा मुहूर्त निकालना पड़े ना, पंडित जी को बुलाते हैं तो गर्गाचार्य जी को बुला करके उनसे शुभ मुहूर्त निकालो।
गैया चरावे नंद लाला तेने फूलों की माला,
गैया चरावे नंद लाला तेने फूलों की माला,
गैया चरावे नंद लाला तेने फूलों की माला,
गैया चरावे नंद लाला पहने फूलों की माला,
फूलों की माला पहने गुंजों 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 की माला,
गलियों चढ़ावे नंद लाला पहने फूलों की माला,
गैया चरावे नंद लाला पहने फूलों की माला।
चरावन की हटठानी,
गाय चरावन की हटठानी,
गाय चरावन की हटठानी,
गाय चरावन की हटठानी,
समझायो परे कनमानी,
समझायो पर एक न माने,
जित पे आला है कमली वाला पहने फूलों की माला,
जित पे खड़ा है मुझे वाला पहने फूलों की माला,
गैया चरावे नंद लाला पहने फूलों की माला,
गैया चरावे नंद लाला
माया। अब भगवान श्री कृष्ण जब ज्यादा जिद पे अड़ गए तो नंद महाराज ने पंडित जी को बुलाए के शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी निकलवाई, और वो समय क्या निकालो बोले कार्तिक की शुक्ल पक्षमी की अष्टमी निकाली, इसे गोपाष्टमी कहते हैं। उसी दिन से भगवान ने गैया चराबो शुरू करी, क्योंकि नंद महाराज ने पहले गोचारण करने को बहुत बड़ो उत्सव मनायो, ऐसा जीव गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू में, 3 दिन तक गोचारण करने का उत्सव मनाया गया। बहुत बड़ा विशाल उत्सव, हमारा कन्हैया गैया चराने जाएगा, बहुत बड़ा विशाल उत्सव नंद महाराज ने कियो, क्योंकि धन की तो कोई कमी है ही नहीं बाबा के यहाँ। बड़ा भारी उत्सव चलता रहा। भगवान श्याम सुंदर, भगवान बलराम स्वयं अपने हाथ से गैया को मिठाई खिला रहे हैं, गैया को स्नान करा रहे हैं, उनके सींगों से बढ़िया चित्र विचित्र क्या क्या बड़ा बहुत कुछ लगा रहे हैं, हरी हरी घास खिला रहे, खूब गाय का पूजन हुआ। फिर कन्हैया जब गैया चरावे के लिए तैयार भये तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे रुको रुको बेटे, श्रीधाम तू कन्हैया के बाएं रह, मधमंगल तू कन्हैया के दाएं चल, और सखाओ कुछ सखाओ पीछे चलो कुछ आगे चलो, कन्हैया को सब बीच में रखना मेरे लाला को। मैया ने ऐसी व्यवस्था अपने हाथ से की, सुबल को इधर कर दिया, श्रीराम को इधर कर दिया, बलदाव को सामने कर दिया, और सब सखाओं को चारों तरफ से। आनंद महाराज ने कन्हैया के लिए गाय चराए के लिए सोने की छड़ी पकड़ाई, सोने की छड़ी, और मैया यशोदा ने बहुत बढ़िया लाला को भोजन की व्यवस्था करके बांध दी, कन्हैया को भूख लगेगी ना। अब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए जब जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते राजन बड़ी सुंदर छवि है, इधर जिस वन में भगवान गैया चराने जा रहे हैं उस वन ने विचार किया, आहा आज हमारा अहो भाग्य है, आज नंद नंदन श्याम सुंदर और हमारे हमारे प्रवेश करेंगे, हमें धन्य करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन उस वन ने भगवान के स्वागत के लिए पहले से ही तैयारी कर दी। क्या तैयारी करी? सुखदेव जी के शब्दों में, तन्माधवो वेण मुदीर व्रतो पशून पुरस्कृत पसद्यमाहर तो काम कुसुमाकरम बनम। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन अब भगवान श्याम सुंदर गैया चराए के लिए जा रहे हैं, चारों तरफ से सखा उनको घेरे हुए हैं, बलराम जी उनके साथ में चल रहे हैं, आगे आगे गैया चल रही हैं, धौरी धौरी गैयन को झुंड अलग है, पीली पीली गैयन को झुंड अलग, और सामली गैयन को झुंड अलग, अलग अलग रंग की गैयाएं अलग अलग प्रकार की, सब अलग अलग उनके झुंड थे अलग अलग। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन बड़ी सुंदर छवि है, भगवान श्याम सुंदर सखाओं से घिरे हुए बलराम जी के साथ और वन में प्रवेश कर रहे हैं गैयान को ले जा करके, और वो वन पुष्पों से फूलों से घास से हरी हरी घास से और वृक्षों की पंक्तियों से बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। उस वन ने भगवान की अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, तन मंजु घोषल मृग ध्वजा कुलम महत मना प्रख्यपय सरस्वता बाते न जुष्टम सतपत्र गंधना निरीक्षरंतुं भगवान मनोदधे। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन तन मंजु घोष अल मृग ध्वजा कुलम, उस वन में हरी हरी वृक्षों की पंक्तियों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे हैं, मानो मानो वैदिक स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हो, और मृग चौकड़ी भर रहे हैं, तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं, कहीं कोयल बोल रही है तो कहीं मोर कूक रहे हैं, और कहीं यमुना कलकल बह रही है। बड़ी सुंदर छवि राजन भोरे गुंजार कर रहे हैं, तरह तरह के झुंड पक्षी चहक रहे हैं, हिरण जगह जगह चौकड़ी भर रहे हैं, काफी जंपन कर उल रहे हैं हिरण, मानो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हो। महतमना प्रख्यपय सरस्वत, और उस वन में जो सरोवर थे उन सरोवरों का जल एकदम स्वच्छ, कैसा स्वच्छ था, बोले महत मना, जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों का हृदय एकदम शुद्ध होता है, राग द्वेष ईर्षा छल कपट भक्तों के अंदर, जिस भक्त के अंदर नहीं होता है उसका हृदय शुद्ध होता है, उसे उस महाभागवत कहते महत मना। जैसे महापुरुष का मन बिल्कुल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, ऐसे सरोवरों का जल स्वच्छ हो रहा था, और उस स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल रहे थे। उन खिले हुए कमलों से सट करके शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस वन की शोभा को देखा, और उस वन में भगवान ने क्रीड़ा करने का मन बनाया। भगवान की बड़ी प्रसन्नता से उसमें इच्छा हुई, इस वन में क्रीड़ा करना चाहिए, और वन में क्या देख रहे हैं,
सतत्र तत्रा अरुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोर भरे पादयो इस प्रशस्य खान वीक्ष वनस्पति मुदा
भगवान श्री कृष्ण उस वन की शोभा को देख करके अपने बड़े भ्राता बलराम से बोले, दादा देखो यह वन की शोभा कितनी बढ़िया है, और यह वन में जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष अपने फल और फूलों से इनकी डालियां झुकी हुई हैं, मानो आपके चरणों में ये फल और फूल समर्पित कर रहे हैं।
अहो अमी देव अमरार्जरार्जितम्, अहो अमी देव वरामरार्जितम्, पादाम्बुजं ते सुमना फलारहणम्, नमन्तु पादाय शिखा विरात्मनः तमोपहत्यै तरुजं यत्कृतम्।
भगवान बोले, देखो भैया बलराम जी, वैसे तो आप बड़े बड़े देवताओं से पूजित हो, बड़े बड़े देवता तुम्हारी वंदना करते हैं, लेकिन यह वन में देखो ये भ्रमर, ऐसा लगता है तुम्हारे पुराने भक्त हैं पहले के कवि, ये भ्रमर मानो आपकी इतनी स्तुति कर रहे हैं आपके पुराने भक्त होंगे, जो ये भ्रमर और पक्षी आपके पुराने कोई भक्त इस समय भ्रमर और पक्षी का रूप बना करके आपकी यहां भी स्तुति कर रहे हैं।
इति अलिनतव्य सो अखिल लोक तीर्थम गायन्ति आदि पुरुषानुपथम भजन्ति प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ बने अपन जयति अनुरात्म देवम।
और भगवान कहते हैं बलराम से, देखो बलराम जी, भैया ये जो पक्षी है ना, ये पक्षी साधारण नहीं है ब्रज के, ये तो ऐसी लगे कोई मुनि है, कोई मुनि संत है, जिन्होंने पक्षी को रूप धारण करके और ये तुम्हारी शोभा को बड़े प्रेम के साथ देख रहे हैं, तुम्हारी छवि के दर्शन कर रहे हैं, यानी भगवान बलराम की बढ़ाई करते हुए इस प्रकार खूब प्रशंसा कर रहे हैं, वन की शोभा बलराम जी को बता रहे हैं, और बलराम जी से कह रहे हैं देखो ये साहब के साहब तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, और देखो ये मोर भी आपको देखकर कि कितना बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, और ये हिरन कितना बढ़िया ये चौकड़ी भर रहे हैं, कूद रहे हैं, मानो आपका स्वागत कर रहे हैं।
धन्य अयम धरणी तृण वीरोधस्पद पादिस्पर्शो दुर्मलता कर जाभिमृष्टा नद्यो वद्रय खग मृगा सदयावलोकई गोप्यो अंतरेण भुजयोरपियत स्प्रहा श्री।
और कहते हैं देखो दादा ये ब्रज की भूमि कितनी धन्य है जिसकी घास पर आपके चरण चल रहे हैं, ये वृक्ष कितने धन्य हैं जिनके आप इन वृक्षों का लताओं का स्पर्श कर रहे हैं, और यहाँ के पशु पक्षी कितने धन्य हैं जिनको आप बड़ी दया भरी दृष्टि से उनको देख रहे हैं। इस प्रकार भगवान वन की शोभा करते करते और वहां बड़ा ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्णा प्रीतमना पशुन रेमे संचारण्यद्रे सरित्रोध सुनासा सुनगह।
श्री सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इस प्रकार भगवान वन की शोभा का वर्णन करते और गिरिराज की तलहटी में गैयान को चरावत भये नाना प्रकार के खेल करत भये अपने सखाओं को खूब सुख प्रदान कर रहे थे। कभी सखा भगवान से नाना प्रकार के खेल करते हैं, नाना प्रकार के खेल हम पहले आपको वर्णन कर चुके हैं, और सखा बड़े आनंद में आनंद ले रहे हैं, पर कुछ सखा बोले श्रीराम आदि
श्रीराम नाम गोपालो राम के सबयो सखा सुवल स्तोक कृष्णाद्या गोपाह प्रेमणेदम ब्रवुन।
एक बार भगवान के सखा सुवल स्तोक कृष्ण श्री राम इत्यादि बोले भैया राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरण, भैया राम तुम तो बड़े ही बलवान हो, महाबाहु हो, बड़े बड़े दुष्टों को तुम पछाड़ देते हो, और कृष्ण भैया तुम तो दुष्टों को मारने में बड़े कुशल हो। भैया इतो विदूरे सुमहत वनम तालाल संकुलम, पास में ही यहां एक तालवन है और तालवन से ये प्रवाही हवा में बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, ताल वृक्षों के पके हुए फलों की खुशबू आ रही है, भैया हमारी इच्छा है रही है उन ताल वृक्षों के उन ताल फलों को खाएं, बड़े स्वादिष्ट होते। ये तो अभी दूर है, थोड़ी दूर पर ही है धरे, पर भैया सुनो वहां एक बड़ा भारी असुर रहता है, असुर गधे के रूप में, धेनुकासुर उसका नाम है, वो किसी को उस तालवन के फल खाने नहीं देता है। बलराम बोले अच्छा तुम्हारी ऐसी इच्छा है, कोई चिंता मत करो हम देखते हैं कैसा है वो धैन का सो।
जो तुम्हारे मन में अस प्यारे कुछ ये दुर्घटनाएं हमारे चलो तालवन प्रिय फल खावो धेनु कुसे डर जाए न उरलावो।
बलराम बोले चिंता मत करो धेनु का असुर से बिल्कुल डरो मत ही, चलो फल खाओ। और भगवान बलराम और कृष्ण सखाओं के साथ उस तालवन में आते हैं, तालवन में आकर के बलराम जी ने तालवन के वृक्षों को पकड़ के ऐसे जोर से हिलाया, ऐसे उनको झकझकाया झकझोरा, तो सारे पटर 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 सारे फल नीचे गिर गए। जैसे ही पटर पटर की आवाज आई, धेनुकासुर थोड़े पास में उधर घूम रहा था, बहुत सारे असुरों के साथ में, गधाओं के साथ में, बहुत सारे गधा असुर के रूप में रहते थे धेनुकासुर के साथ में। धेनुकासुर के कान में आवाज आई, भाई हमारे तालवन में आज कौन किसने आक्रमण कर दियो। दौड़ो दौड़ो जैसी वो आयो वहां पे, तो वहां ने जैसे ही देखा तो बलराम की ओर बड़ी तेजी से दौड़ा मारने के लिए। पहले पीछे को हटा और पीछे हटके फिर तेजी से आगे दौड़ के आया और थोड़ा पीछे घूम के अपने पीछे की दोनों लाते मारी, क्यों गधा का सबसे बड़ा अस्त्र होता है उसकी लाते, है ना। दुलत्ती मारी बड़ी जोर की, तो भगवान बलराम की छाती पर उसने बड़ी जोर की जब लाते दुलत्ती मारी तो भगवान बलराम को ऐसी मालूम पड़ी किसी ने फूल हमारी छाती पे फेंको है। केवल फूल सो मालूम पड़ी उन्हें। वो गधा बड़े क्रोध में आ गया, इसको भी कुछ हुआ नहीं, गिरा नहीं, मरा नहीं। फिर दोबारा पीछे को हटा तेजी से, फिर बड़ी तेजी से भाग करके आया है। और जैसे ही बलराम के उसने अपने दोनों लात मारना चाही, भगवान ने एक हाथ से उसकी टांग पकड़ के ऐसो घुमायो, ऐसो घुमायो, उसके घुमाने पर ही प्राण निकल गए और उसी वृक्ष में ताल के ऐसा धड़ाम से मारा, सब वृक्ष टूट गया। अब दूसरे वृक्ष से दूसरा, फिर तीसरा, सब एक दूसरे से वृक्ष टकरा करके सारे वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। धेनुकासुर का तो गोविंद नमो नमा हो गया। और भी बहुत सारे गधे आए, उन गधों को सबको मार दिया। अब गधाओं से पूरा तालवन पट गया, फल भी काफी पड़े हैं और गधे पर गधे काफी मरे हुए पड़े। अब भगवान के सखा बोले, भाई ऐसे फल तो हम खाएंगे नहीं, मेरे गधा मरे पड़े हैं। तो इस प्रकार भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया और धेनुकासुर दिव्य शरीर धारण करके भगवान की स्तुति करके गया।
जय हो सुर नायक नागपते, जय हो यदुनंदन विश्व अधारा। जय हो सुर नायक नागपते, जय हो यदुनंदन विश्वधारा।
नायक नागपते, जय हो यदुनंदन विश्वधारा।
अत्याधम जीव उधार लिए, मैंने तुम धार
इस प्रकार वो भगवान की स्तुति करके चला जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन सभी सखाओं ने जय हो दाऊ की बोला, क्योंकि उस असुर का वध किया था बलदाऊ ने। आगे वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अनेकों अनेकों लीलाएं ब्रज में करते थे।
एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरह क्वचित ययौ राममृते राजन कालिंदी सखिभिर्व्रतः।
सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गैया चराते और नित प्रति कोई न कोई लीलाएं करते रहते थे। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण गैया चरावे के लिए वृंदावन ब्रज में गए और उस दिन बलराम जी को साथ में नहीं ले गए। बलराम जी का जन्मदिन था तो मैया रोहिणी ने उनको रोक लियो, उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी, भगवान जब गैया चरावे के लिए गए, बड़ी भारी धूप पड़ रही, गैयों को बड़ी भारी प्यास लगी, सखावी प्यास से अकुला गए। तो यमुना जी में जाकर के गैयाओं ने पानी पिया, सखाओं ने भी पानी पिया, पानी पीते सब जमीन पर गिर पड़े। क्यों गिर पड़े? बोले वो यमुना का जल बड़ा दूषित था। यमुना के जल को पी करके सब गायें बछड़े ग्वाल वाल सब निष्प्राण हो गए, सबकी मृत्यु सी हो गई। भगवान ने देखा मेरे लिए सर्वस्व मानने वाले मेरे सखा सब प्राय मर चुके हैं, जहर को पानी पी के। मेरी गैया भी सब मृत प्राय हो चुकी हैं। भगवान ने जब देखा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बिलो के दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा ही नाम विभो तस्या विशुद्धुमन विक्षन सर्पम तमुदवासयतो। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने उस यमुना जी को देखा, इस यमुना को काली नाग ने दूषित कर दिया है, तो भगवान ने अपनी गैयान और बछड़न को तो अमृतमय दृष्टि से उन्हें जीवन दान कर दिया। अमृतमय दृष्टि डाली, सब उनकी गाय और बछड़े और ग्वाल वाल साहब ज्यों के तुम। और भगवान ने उस काली का दमन करके उस जल को भगवान ने शुद्ध बनाया। महाराज परीक्षित पूछते गुरु जी, इतने गहरे जल में वो नाग कैसे रहता था वहां, और भगवान ने कैसे उसका दमन किया, थोड़ा विस्तार से बताएं।
कथम अंतर जले अगाधे निगृहात भगवान अहिं सबैव युगावासं यथासीद्धि प्रकथ्यताम्।
महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुजी ये बताओ कि इतने अगाध जल में भगवान श्री कृष्ण ने और उस काली नाग को कैसे दमन किया, और फिर काली नाग इतने समय से उस जल में क्यों रह रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, भगवान ने देखा किस काली नाग ने ये यमुना का जल दूषित कर दिया है, तो भगवान खेल के बहाने यानी गेंद से खेल रहे थे, गेंद जान मान के यमुना जी ने फेंक दिया। श्रीराम बोला, भैया ये मेरी गेंद तेने यमुना जी ने फेंक दी। कन्हैया बोले, कोई बात ना, दूसरी गेंद बढ़िया बनवा देंगे। नहीं कन्हैया, सारे में अपनी नानी के जाएंगे, नानी के गांव से बढ़िया सी गेंद लेके आओ, मेरे नानी के हाथ की निशानी, और तेने यमुना जी फेंक दी, वही गेंद चाहिए मेरे को। कन्हैया बोले, दूसरी बनवा देंगे। नहीं नहीं, हमको वही गेंद चाहिए। कन्हैया बोले, ठीक है लेके आता हूं। कन्हैया अपने फेंटा को ठीक से कसो बढ़िया, और बाल पीछे को किए कन्हैया ने, आवस कदम के पेड़ पर चढ़ गई। श्रीराम बोला, अरे भैया देख जमुना बड़ा, ये जमुना में बहुत बहुत बड़ी बढ़िया सांप रहे नाग रहे, इसमें कूदना मत। सखा तो मने करते रहे, कन्हैया एकदम जंप लगाई, कूद पड़े जमुना जी में। बड़ा अगाध पानी था उस यमुना के कुंड में, इतना अगाध पानी था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बिल्कुल मानो समुद्र का ही बच्चा हो, बहुत भारी पानी, अथाह पानी था उसमें। और उस जल के अंदर काली नाग अपना फ्लैट बना के रहता था। जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो काली नाग जल स्तंभ की विद्या जानता था, जल को स्तंभ करके और बढ़िया ऐसे खंबे बना करके, बढ़िया अच्छा मेटल बना करके, बढ़िया उसने अच्छे फ्लैट बनाए वहां, बढ़िया बढ़िया कालिंदी कुंज बना दिया पूरा। और उस हृदय के आसपास चारों तरफ उसके रिश्तेदार, उसके और भी परिवार वाले सब बड़े बड़े बिल बना करके रहते थे। तो उस हृदय में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता था, यहां तक कि देवताओं को भी दुर्लभ था वहां ना। काली नाक के जहर से वो उसका जल ऐसा खोलता रहता था मानो कोई पानी को उबाल रहा हो, जैसे पानी को उबालते हैं भाप निकलती है उसमें से, ऐसे भाप निकलती थी उसमें से। अगर भूल से भी कोई पक्षी ऊपर होके उड़ के जाता है तो झुलस के नीचे ही गिर जाता था। इतना काली नाक का जहर था, भगवान उसमें कूद पड़े। जब भगवान कूदे तो उनके कूदने से जल में बड़ी भारी आवाज आई, और जल जब हिल गया तो काली नाक का फ्लैट भी हिल गया, मकान बना के रह रहा था उसने वो। जब उसका भी फ्लैट हिल गया तो उसने विचार किया, भाई ये कैसा भूकंप सा आ गया, आज हमारे कालिंदी कुंज में किसने आक्रमण कर दिया, किसकी हिम्मत, निकल के देखें। अब जैसे ही वो बाहर निकल के देखा उसने तो क्या देख रहा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदा तुम श्रीवत्स पीतवसनम स्मित सुंदरस्यम क्रीडन्तं प्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं संदंस्य मर्म सूर सा भुजया चाद। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन जब काली नाग ने देखा कि हमारी इस हृदय में किसने आक्रमण कर दिया है, किसकी हिम्मत, जब उसने देखा तो क्या देखता है, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदा तुम, एक सुकुमार बालक देखा, कैसा था, बोले घना बदा तुम, जैसे वर्षा कालीन मेघ होते हैं ना, वर्षा कालीन काली काली घटाएं, ऐसे बिल्कुल काले काले बादलों के समान श्याम वर्ण वाला वो सुंदर बालक देखा। श्रीवत्स का चिन्ह है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, मंद मंद मुस्कान है, क्रीडंतम प्रति अभयम, और निडर होकर के खेल रहे हैं गेंद से, क्रीडंतम अभयम, बिल्कुल निडर होकर के वो बालक खेल रहा है। कमलोदरांग्रिम, और उस बालक के पैर चरण आहा, एकदम कमल के समान बड़े सुकोमल चरण है उस बालक के, बड़ा सुकुमार बालक है, श्याम वर्ण है, पीतांबर धारण किए हुआ है, श्रीवत्स का चिन्ह है, घुंघराली अलके हैं, और मुख पर मंद मंद मुस्कान है उस बालक की। इतना सुंदर बालक उस काली नाग ने देखा, एक बार को तो मुग्ध हो गया, आहा हा, इतना सुंदर बालक हमने आज तक कभी देखा नहीं। पर काली नाग सांप था ना, तमोगुणी जीव है, अहंकारी जीव, क्रोध आ गया, इसकी हिम्मत कैसे बड़ी जो यहां तक आया ये। अच्छा, और यहां आ भी गया तो अब तक जीवित कैसे है ये, अरे मेरा इतना जहर है इसमें यमुना में, ये अब तक जीवित कैसे है, इसकी हिम्मत कैसी, एकदम क्रोध में आ गया और बालक को पकड़ के उसने अपने उसमें लपेटा में लगा लिया। कृष्ण उसकी बंधन में आ गए। जब कृष्ण बंधन में आ गए और ऐसे मूर्छित से हो गए मानो इनमें कब हुई कुछ जान नहीं रही क्या, सखाओं ने जब देखा तो सखा तो बस कन्हैया की ऐसी हालत देख के एकदम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। कन्हैया तो हमारा प्राण ही है, हम जी के क्या करेंगे, वो भी एकदम जमीन पर गिर पड़े धड़ाम से मूर्छित होकर। गायें बड़ी जोर से टकरा रही हैं, आंखों से आंसू की धारा आ रही है गैयन की। अब इधर सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन ब्रज में बड़े भारी असुगुण होने लगे। इतने भारी असुगुण, श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रज में तीन प्रकार के असुगुण होने लगे। पृथ्वी में कंपन होने लगा, आकाश में उल्कापात होने लगा, और जीवों के शरीर में भी कंपन के साथ साथ बाई आंख फड़कना। जब ब्रज में इतना भारी असगुन होने लगा, नंद बाबा बहुत दुखी हुए। यशोदा मैया तो एकदम बेचैन हो गई, आज मेरे कनुआ बिना बलुआ के साथ में ले भाई गैया चराए वे गोवे। रोजाना कोई न कोई असुर, कोई न कोई दुष्ट आता ही रहता है वन में। आज लगता है मेरे कन्हैया को किसी असुर ने मार दिया, आज मेरे लाला इस संसार में हो नहीं। बड़े भारी असुगुन हो रहे। नंद महाराज भी बड़े दुखी हुए, सब ब्रजवासी एकदम बहुत दुखी हो जाते हैं, सभी गोप और गोपियां सब इकट्ठी होकर के। जबकि बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, उनके लिए कुछ है ना उत्सव मना रहे थे, सब कुछ भूल गए वो, और सभी के सब दौड़ पड़े वन की ओर। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते देखते यमुना जी के किनारे सब आ जाते हैं। यशोदा मैया ने देखो मेरे लाला सांप के बंधन में है, एकदम धड़ाम से पछाड़ खा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। मैया को होश ही नहीं रहा, मेरा कन्हैया नहीं रहा तो अब मैं रह के क्या करूंगी। और भी बहुत सारी गोपियां बेहोश हो गई, जो कुछ गोपियां होश में थी वो मैया को समझा रही, अरे यशोदा धीरे धारण करो, देखो तुम्हारे लाला पे नारायण की बहुत बड़ी कृपा है, जितने जितने असुर आया लाला के पास में तुम्हारे नारायण की कृपा थे, जा लाला ने सबरे असुरों को मार दियो, और है सके तुम चिंता मत करो, याऊ को मार देगा वो। तो जिन गोपियों को होश था वो तो मां यशोदा मैया को समझा रही, और अधिकांश गोपियां बेहोश होकर के जमीन पर धड़ाम से गिर गईं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों के प्राण ही थे। नंद बाबा तो जमुना जी में कूदे पड़े, मैं तो जाके जमुना जी में प्राणों को त्यागूंगा, मेरा कन्हैया ही नहीं रहा तो मैं रह के क्या करूंगा। बलराम जी रुक रहे, अरे बाबा सुनो, रुको रुको ना, चिंता मत करो, कन्हैया ठीक से निकला रहो। तो बलराम किसी को बलपूर्वक रोक रहे हैं, किसी को समझा के रोक रहे हैं, बलराम जी सबको रोक रहे हैं, और बलराम जी को थोड़ी हंसी भी आ रही है, कन्हैया को देख के हंस भी रहे हैं। अरे कन्हैया तुम सांप से खेल रहे हो। बलराम तो भगवान के सब महत्व को जानते ही हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब ब्रजवासी मेरे लिए अपना प्राण ही समझते हैं, थोड़ी देर हम ऐसो और नाटक करते रहे तुम्हारे ब्रजवासी सब अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान ने फिर अपने शरीर को खूब बढ़ाया, भारी किया, उस सर्प की एक एक नस ढीली हो गई, ऐसा मालूम पड़ा कि उसकी वजह सारा शरीर टूटा जा रहा है। एकदम भगवान को बंधन से छोड़ करके सर्प अलग खड़ा हो जाता और फुफकार मारता उनको काटने के लिए। जैसे ही भगवान सर्प के बंधन से बाहर निकले, भगवान ने एक जंप लगाई, उसके फण पर चढ़ गई, 101 फण थे उसके। अब जिस फण को उठाता है उसी फण में भगवान ठोकर मारते, जिस फण को उठाता है उसी में ठोकर मारते। अब भगवान इतना बढ़िया नृत्य शुरू कर दिया, एकदम मानो तांडव नृत्य कर रहे हो सर्प के फणों पर। सर्प के फण सब चितर बितर हो गए, खून निकलने लगे, पर सर्प के प्रत्येक फणों पर मणि थी मणि। तो भगवान के चरण उन मणि का स्पर्श करके और भी सुंदर लगने लगे। एक तो भगवान के चरण कमल के समान और भी लालिमा को प्राप्त हो गए, बड़े सुंदर उनकी चरण कमलों की शोभा है, और भगवान बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। जब भगवान ने नृत्य शुरू कर दिया तो भगवान के सखा भी उठ करके वो भी नाचने लगे, गोपियां भी खूब नाचने लगी। अरे गोपियों ग्वालन की बात छोड़ो, स्वर्ग लोक से देवता आ गए अपने अपनों बात लेकर के, इंद्र भी अपना पखावज लेके आ गए, सरस्वती अपना बिंदा लेकर के आ गई, हर देवता अपना अपनों बात लेकर के आ गए और सब भगवान के उस तांडव नृत्य में सब अपने अपने वाद्य बजा रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। सबको तो आनंद आ रहा है, सब खूब आनंद में है, पर दुखी कौन है? जो सर्प की पत्नी थी, नाग पत्नियां हैं, उन्होंने विचार किया कि थोड़ी देर और हमारे पति के मस्तक पे से नृत्य हो गया तुम्हारे पति का तो गोविंद नमो नमा हो जाएगा, हम हो जाएंगी विधवा, हमारे पुत्र बच्चे हो जाएंगे अनाथ, अपने बच्चों को आगे करके भगवान के सामने आ गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे बच्चों की ओर देखो, वैसे तो आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह ही किया है।
अनुग्रहो अयम भवता क्रतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषाप यददंदशोक त्वं अमुष्य देहिनः क्रोधो अपि ते अनुग्रह एव सम्मतः।
नागपत्नी बोली, प्रभो अनुग्रहो अयम, ये आपने हमारे ऊपर कितना भारी अनुग्रह किया है। भगवान बोले, तुम्हें क्या अनुग्रह दिख रहा है, इसकी पिटाई हो रही है और तुम्हें अनुग्रह दिख रहा है? हाँ प्रभो, यही तो आपका अनुग्रह है। प्रभो आपका अवतार ही दंडों को, दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है ना, अभिमानियों का अभिमान चूर करने के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए प्रभु आपका अवतार हुआ है। पर प्रभु ये तो स्वाभाविक तमोगुणी जीव है ना, ये अपने पहले के पापों की वजह से ही तो इसको सर्प बनना पड़ा, सर्प की योनि मिली। पर सर्प की योनि मिलने पर भी आपने इसके ऊपर इतना अनुग्रह किया है। भगवान बोले, क्या अनुग्रह है?
बोले, कस्यानुभावो अस्य न देव विदमहे तवांग्रे रेणु स्पर्शाधिकार यदवांचया श्री ललना चरतपो विहाय कामांसु चिरं द्रव्रतः।
नागपत्नी कहती है, प्रभो ये आपने अनुग्रह नहीं किया है तो और क्या किया है, कितना भारी आपने अनुग्रह किया है। कश्यान भाव वसनदे विदमहे, हे प्रभो हम नहीं जान पा रही कि इस काली नाग ने कौन से जन्म में ऐसी भारी तपस्या करी है, कौन सो ऐसो जाने भजन साधन किया है जो अमान ना मान दे, स्वयं मान से रहित होकर के दूसरों को मान दे करके इसने क्या हरि नाम का जप किया है, या कोई किसी सुपात्र को दान दिया है, या कौन सी साधना करी है जिस साधना के फल स्वरूप आपकी चरण रेणु का अधिकारी बना। तवांग रेणु स्पर्शाधिकार, ये आपके चरणों को स्पर्श करने का अधिकारी बना। प्रभु आपके चरणों की रज को चाहने के लिए तो यदवांछया सी ललना चरत तप, लक्ष्मी जी आपके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए बड़ी चिरकाल से बेलवन में तपस्या कर रही हैं आज भी प्रभु, और उन्हीं चरण रज को, उन्हीं चरण रज क्या, पूरे ही चरण आपने इस काली नाग के मस्तक पर रख दिए, रखे ही क्या आप उन चरणों से इस नाग के मस्तक पर नृत्य कर रही हो प्रभु, तो इसकी भाग्य की सराहना कौन से शब्दों में की जा सकती है, ये हम नहीं देख पा रहे कि कौन से जन्म में इसने इतना भारी तपस्या कोई साधन किया है। अरे प्रभु, आपकी चरणों की रज को प्राप्त करने वाले संसार की किसी भी वस्तु को नहीं चाहते, सब वस्तु को ठुकरा देते हैं।
ननाक प्रष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्नः।
नाग पत्नी कहती है, हे प्रभु, अरे जो आपका भक्त होते हैं वो आपके चरणों की रज को ही चाहते हैं, यहां तक कि वो ब्रह्मा की पदवी भी नहीं चाहते, संपूर्ण पृथ्वी का सार्वभौम राज्य भी नहीं चाहते, और वो स्वर्ग का भी इंद्र का भी राज्य नहीं चाहते, पर रसातल का भी राज्य नहीं चाहते, यहां तक वो रिद्धियां सिद्धियां भी कुछ भी नहीं चाहते। अरे और तो छोड़ो, वो मोक्ष भी नहीं चाहते, वो केवल आपके चरणों की रज को चाहते हैं। सर्वस्व त्याग कर देते हैं आपकी चरणों की ही रज की चाहने के लिए, वो सर्वस्व त्याग कर देते हैं। पर इस काली नाग ने ऐसा कौन सा पुण्य, ऐसा कौन सा धर्म, ऐसी कौन सी तपस्या साधन किया है जो तवांग रेणु इस प्रसादकार या आपके चरण रजों का अधिकारी बना। सुखदेव गोस्वामी के चिराजन नाग पत्नियों ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की, और काली नाग को भी लगा के ये कोई साधारण बालक नहीं है, उसे लगा बस मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नाग पत्नियां ने इशारा किया, ये बड़े कृपालु हैं, क्षमा मांग लो इनसे, क्योंकि भगवान जब नाग पत्नियों की प्रार्थना से उसके फणों से नीचे उतर आते हैं तो फिर भी नाग अकड़ के खड़ा हो गया एक तरफ। नाग पत्नियां बोली, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, इनको प्रणाम कर लो। तो काली नाग फिर भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है, विशेषकर जो नाग पत्नियों ने प्रार्थना की थी वही लगभग दोहराई है उसने, और भगवान से कहा, हे प्रभु, इस संसार में क्या पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि करता कौन है? भगवान बोले, हाँ मैं। तो सभी प्राणियों के अंदर जो आप गुण देने वाले हैं, तीनों गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो कौन देते? बोले भगवान, बोले सब हमारी सृष्टि है। तो प्रभु, हम जो सर्प है ना, सर्प योनी में तमोगुण आपका ही तो दिया हुआ है ना। प्रभु, सर्प तो स्वभाव से तमोगुणी जीव होते हैं, स्वभाव बस प्रभु मैंने आपका बहुत अपराध किया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु, तुम्हारा ही दिया हुआ क्रोध तमोगुण दिया हुआ था, वो हमने आपको समर्पित कर दिया, हमारी इसमें क्या गलती, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, आपने तो ऐसा स्वभाव बनाया है ना। तो भगवान बोले, देख काली, वो तो बात ठीक है, अब तू जल्दी से जल्दी यमुना को खाली करके कहीं अन्यत्र चले जाओ। कहां जाओ प्रभु? रमणक द्वीप चले जाओ। अरे प्रभु, वहां तो आपके ही वाहन गरुण जी हमारी बड़ी पिटाई करेंगे, वहां हमको रहने ही नहीं देंगे, उनके भय से तो हम रहते, उन्हीं के डर से हमने इस काली इस हृदय की हमने शरण लिया। प्रभु, भगवान बोले, अब चिंता मत करो, अब हमारे वाहन गरुण जी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह जो बन गए ना, हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, और जिस पर हमारी कृपा हो जाती है उस पर फिर सभी कृपा करते हैं। जाओ यहां से, अपने बाल बच्चे सब लेकर के, यमुना को तुमने दूषित कर रखा है, खाली करो उसे। तो काली नाग ने बड़े बड़ी सुंदर भगवान को उपहार अर्पित किए हैं, बड़े सुंदर कमल के फूल, नील कमल, क्या क्या बहुत, और मणि इत्यादि बहुत भगवान को उपहार समर्पित किए हैं। और काली नाग फिर वहां से निकल कर रमणक दीप ले जाता है। भगवान ने इस प्रकार यमुना के जल को स्वच्छ बनाया।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। शोकदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन उस दिन ब्रजवासी वहीं जमुना जी पर ही सो गए थे, सब जमुना के किनारे। रात्रि में बड़ा भारी अग्नि लग गई। उस दावानल को देख करके सभी ब्रजवासी, अरे कन्हैया भैया देख रक्षा कर, बड़ी भारी अग्नि है तो सबको जलाएं दे रही है। भगवान ने कहा ठीक है, सब अपनी आंखें बंद करो। सब ने आंखें बंद करी, भगवान सारी अग्नि को पी गए। दावा नल से भगवान ने उन सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी। और उसी बीच में जब गैया चराते थे भगवान, प्लम्बासुर नाम का एक असुर और आया था ग्वाले के रूप में, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और फिर सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन करने के बाद फिर शरद ऋतु का वर्णन किया।
श्री सुकुवाच इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुनाम वातम सगो गोपाल कोच्युत।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, वर्षा ऋतु बीतने के बाद जब शरद ऋतु आई तो शरद ऋतु आने पर नदियों का जल स्वच्छ हो गया, सरोवरों का जल एकदम निर्मल हो गया। और ऐसे स्वच्छ सरोवरों में बड़े सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे, बड़ी सुंदर सुगंध शीतलमंद सुगंध वायु बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को साथ में लेकर के बलराम के साथ उस वन में गैया चराने के लिए प्रवेश किया। कैसा वन था? बोले कुसुमित वन राज सुष्म भृंग ध्वज कुल दुष्ट सरह सरिंद्र मधुपति भगाय चारयंग सह पशुपाल बलश्च को जुबेड़ु। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन वह वन बड़ा ही सुंदर था, हरे हरे वृक्षों से और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से हरी हरी घास से भरा हुआ वन बड़ा सुंदर वन था। उस वृक्षों पर भौरे गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहक रहे थे। भगवान ने उस वन में अपने सखाओं के साथ प्रवेश किया और गैया चराते हुए भगवान मुरली को बजाने लगे। सुखदेव गोस्वामी के राजन तद स्त्री आश्रित्य वेणु गीतम स्मरोदयम् काचिन परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अनुवर्णयन्। सुखदेव जी कहते राजन जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराते हुए और अपनी मुरली पर मधुर तान छेड़ने लगे, मधुर तान छेड़ी तो भगवान की उस सुंदर मुरली की ध्वनि को तद ब्रज स्त्रीह आश्रित्य ब्रज की गोपियों ने जैसे ही मुरली की ध्वनि को सुना वेणु गीतम स्मरोदयम् उस वेणु का मधुर गीत सुन करके अब गोपियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अति प्रेम जागृत हुआ, उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और कुछ गोपियां कुछ अन्य गोपी से भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी और रूप माधुरी का वर्णन करने लगी।
तद वर्ण्य तुम आरब्धा स्मरन्ति कृष्ण चेष्टितम् नासकन् स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नपः।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का और रूप माधुरी का वर्णन करना चाहा तो जरूर, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन करने लगी उसी समय भगवान श्री कृष्ण की एक एक चेष्टा उनको स्मरण होने लगी, उनकी मधुर मुस्कान, भौं के इशारे, एक एक उनकी जो चेष्टाएं थी उनको स्मरण होने लगी।
तो नह सकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नपः।
राजन अब उन गोपियों का हृदय बिल्कुल उनका मन उनके पास रहा ही नहीं, गोपियों का मन गोपियों के हाथ से निकल गया। अब वो वर्णन करना चाहती थी वर्णन नहीं कर पा रही, अब उनका मन उनके हाथ में रहा ही नहीं तो वर्णन करें कैसे। अब उनका मन कहां पहुंच गया? जहां प्यारे श्याम सुंदर थे, भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ वन में गैया चला रहे थे, उन गोपियों का मन वो मन ही मन गोपियां वहीं पहुंच गई, बैठी ब्रज में सभी एकत्र एक जगह बैठी हैं और उनका मन नंद नंदन के पास पहुंच गया। अब वो मन ही मन क्या देख रही है, प्यारे श्याम सुंदर वन में प्रवेश कर रहे हैं, कितनी सुंदर छवि है।
बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रद्वास कनक कपिसम् वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृन्दारण्यं सपद रमणं प्राविशत गीत कीर्तिः।
शुद्ध गोस्वामी के तुराधम। अब गोपियों का मन उनके हाथ से निकल गया और मन ही मन कहां पहुंची, जहां श्याम सुंदर नंद नंदन गैया चराने के लिए वन में प्रवेश कर रहे हैं और उनकी सुंदर छवि का रूप माधुरी का दर्शन कर रही है मन। आहा, प्यारे श्याम सुंदर कितनी सुंदर छवि है, वो श्याम शरीर है और श्याम वर्ण पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, कानों में पीले पीले कनेर का फूल है और पीतांबर धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, उनके मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट बड़ा सुशोभित हो रहा है और अपनी मुरली को अपने होठों पर धारण करके उस मुरली के क्षेत्रों को अपने अधरामृत से पूरित कर रहे हैं। उनके ग्वाल बाल उनकी पवित्र कीर्ति का गायन करते हुए जा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर अपने नन्हे नन्हे सुकोमल चरणों से इस ब्रज की भूमि को और भी सुशोभित कर रहे हैं। कितनी सुंदर प्रभु की झांकी है, वो गोपियां भगवान के रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, बोले इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो भिरे भिरे। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, इस प्रकार वो गोपियां जब ब्रज स्त्रियों ने, ब्रज की गोपियों ने भगवान की मुरली की ध्वनि को सुना और भगवान की रूप माधुरी वेणु माधुरी का वर्णन करने लगी। कौन सी मुरली की ध्वनि को सुना,
बोली सर्वभूत मनोहरम।
भगवान की मुरली की ध्वनि ऐसी थी कि सर्वभूत मनोहरम समस्त प्राणियों के मन को हरने वाली थी। क्या चर क्या अचर, क्या पशु क्या पक्षी, क्या मनुष्य क्या देवता, सभी के सर्वभूत मनोहरम समस्त प्राणियों के मन को हरने वाली भगवान श्याम सुंदर की वंशी की ध्वनि को उन गोपियों ने सुना। देखिए कभी तो भगवान ऐसी वंशी बजाते हैं सभी प्राणी सुने और कभी ऐसी मुरली बजाते हैं जिसको सुनाना चाहे वही सुने। यह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वभूत मनोहरा राजन, जिसके कान में मुरली की धुनी गई बस जो चल थे चर वो अचर हो गए। जैसे यमुना जी का जल चलता है ना, मुरली की धुनी को सुनकर के जल की धाराएं खड़ी हो गई, यमुना जी की धारा आगे नहीं बढ़ रही, तरंगे खड़ी हो गई, मानो तरंग रूपी भुजाओं से श्याम सुंदर का आलिंगन करना चाह रही हूं क्या। जो पशु थे वो ऐसे एकदम स्तंभ खड़े हो गए मानो चित्र लिखे से खड़े हो। जो अचल पर्वत होते ना, पर्वत अचल होते वो चलते नहीं, मुरली की ध्वनि को सुनकर के पर्वत पिघल गए और वो चलने लगे। पर्वत पिघल करके बहने लगे पर्वत, सर्वभूत मनोहरम पर्वत भी पिघल गए। आज भी आप ब्रजमंडल में परिक्रमा करने जाएंगे तो चरण पहाड़ी के दर्शन करेंगे ना, भगवान मुरली बजाते थे पर्वत पिघल जाते थे, तो तो उनके गैयन के बछड़न के ग्वालन के भगवान श्री कृष्ण के बलराम जी के सबके चरण चिन्ह आज भी बने हुए हैं, क्योंकि सर्वभूत मनोहरा उनकी मुरली ऐसी है सबके मन को हरने वाली, और चल अचल हो जाते और अचल चलने लगते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो विरे विरे, जब ये बंसी की धुनी ब्रज की गोपियों ने सुना वो अपना होश हवास भूल गई और एक दूसरे का आलिंगन करने लगी, मानो श्याम सुंदर का आलिंगन कर रही है क्या, आंखों से आंसू प्रेम की आंसू की धारा बह रही है। वर्णयन्तो भिरे भिरे वो अब एक दूसरे से आपस में आलिंगन करके और श्याम सुंदर की वेणु माधुरी का वर्णन कर रही है और कहती है अरे सखी
गोपी ही उच हो।
गोपियां अब क्या कह रही हैं,
अक्षणवताम फलमिदं न परम वेदाम सख्य पशुनन विवेश्यतो उर्वयस्य वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनु वेणुजुष्टं ऐरवानि पीतमनु रक्त कटाक्ष मोक्षम।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन अब गोपियाएं एक दूसरे से वर्णन कर रही हैं भगवान श्याम सुंदर की वेणु माधुरी और रूप माधुरी का वर्णन कर रही गोपियाएं। एक सखी कहती है दूसरी सखी से अरे सखी हमने तो आंख वालों के और उनके जीवन की सफलता इसी में समझी है और तुम कुछ जानती नहीं, बस इतना ही जानती हैं कि जिसको भगवान ने दो नेत्र दिए हैं और ये जीवन दिया है तो उसके जीवन की सार्थकता और उसके नेत्रों की सार्थकता ऐसी तभी है जब प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गैया चराने के लिए वन में जा रहे हों अथवा वन से गैया चरा करके लौट रहे हों और उन दोनों भाइयों ने अपने अधरों पर मुरली को धारण किए हुए हों और हमारी ओर तिरछी नजर से मंद मंद मुस्कुराते हुए हमारी ओर देख रही हों। आहा सखी और तुम कुछ जानती नहीं, बस हम उनकी रूप माधुरी पर न्योछावर पूरी बलिहार जाती है। यहां पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में इस प्रकार टीका की है कि गोपियां कहना चाहती हैं हे सखियों यदि तुम इन संसार में पारिवारिक जीवन के बंधनों में जकड़ी रही यदि तुम इस संसार में पारिवारिक जीवन में जकड़ी रही तो तुम्हें देखने को और क्या मिल सकेगा। अरे सृष्टा ने हमें दो आंखें दी हैं तो हम सबसे अद्भुत दर्शनीय वस्तु श्री कृष्ण को देखें। तो गोपियां कहती हैं अक्षण बताम फलमिदम न परम विदाम, अरे आंख वालों की और आंखों के जीवन की सार्थकता इसी में है कि प्यारे नंद नंदन श्याम सुंदर के दर्शन करें। कुछ गोपियां बोली अरे सखी जानती हो एक तो श्याम सुंदर वैसे ही सुंदर हैं और मैया उनको बहुत बढ़िया श्रृंगार करे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनावे, बढ़िया से बढ़िया कीमती आभूषण धारण करावे और उसके बाद जब कन्हैया गैया चराए जावे तो भगवान के सखा वन में जाकर के भगवान को और श्रृंगार करें। किससे श्रृंगार करते हैं, पूरे आम के वृक्षों की नई कोपलों से, जो नए नए पत्ते होते हैं ना उन नए कोपलों से, फूलों के गुच्छों से, मोर के पंखों से भगवान का और श्रृंगार करते हैं। और दोनों कृष्ण बलराम इतना बढ़िया श्रृंगार करके और बलराम जी के श्याम वर्ण पर नीलांबर, श्याम सुंदर के गौर वर्ण पर पीतांबर, गले में बड़ी सुंदर बनमाला और दोनों भैया जब सखाओं की गोष्ठी के अंदर बैठ जाते हैं और सखी जब वो कुछ गीत छेड़ते हैं आहा ऐसे लगते हैं मानो किस रंग मंच पर और दो श्रेष्ठ नट अभिनय करने के लिए इतनी सुंदर छवि बनाई हो, बड़ी सुंदर छवि लगती है सखी। एक सखी बोली, अरे सखियो इतनी सुंदर छवि के हम दर्शन करें तो हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं।
गोप्यः किमाचदयं कुशलं सवेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंते स्वयं यदवशिष्ठ रसं हृदन्यो रस्य त्वचो अस्त्र मुमुचु तरवो यथार्यः।
कुछ गोपियां बोली, अरे सखियो तुम देखती नहीं बेणु बंसी के लिए, बेणु को देखो, बेणु को मुरली को, जो हमेशा श्याम सुंदर के होठों पर ही रखी रहती है ये। अरे इस बेणु ने कौन सो ऐसे पुण्य कियो है जो हमेशा नंद नंदन इसको हमेशा अपने पास में ही रखते हैं। अरे इस मुरली से इतना प्रेम करते हैं हमको भी भूल गए वो, तो ये मुरली तो लगे हमारी सौत कहां से आ गई है। जो हम गोपियों की अपनी संपत्ति है, दामोदर का आधरा अमृत अकेले ही पिए जा रही है सब, लगता है हमको बिल्कुल शेष कुछ छोड़ेगी नहीं है।
ये मुरली हमको सोती भई, ये मुरली हमको सोत बनी है, ये मुरली हमको सोती भई, मुरली हमको सोत बनी है।
गोपियां कहती हैं ये मुरली तो हमारी सौत बन के आ गई, जो दामोदरा अधर सुधाम अपि गोपिका नाम, जो दामोदर भगवान का अधरामृत है, हम गोपियों की अपनी संपत्ति है, वैसे ही मुरली सब पिए जा रही है, सब पिए जा रही है। तभी तो देखो मुरली को देख करके जो वृक्ष है ना वो भी प्रसन्न हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बांस के वृक्ष हैं वो तो बड़े हर्ष प्रकट कर रहे हैं, मानो सरोवर के माध्यम से सरोवर में जो पुष्प खिल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इन वृक्षों को रोमांच उत्पन्न हो रहा है। और वृक्ष भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वृक्षों को लग रहा है चलो कम से कम हमारी जात में, वृक्षों की जात में एक ऐसा वृक्ष है जो भगवान का सबसे प्रिय है। जिस प्रकार आर्य पुरुष जो होते हैं सभ्य पुरुष, उनके परिवार में कोई उनका बेटा भगवान का भक्त निकला है तो अपने पुत्र को भक्त को देख करके प्रसन्न होते हैं, अरे हमारे कुल में हमारे परिवार में हमारा एक संतान तो कम से कम भगवान की भक्त निकली। उसी प्रकार सभी वृक्ष बड़े प्रसन्न है रहे, यहां तक कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा भरी, वृक्ष भी रो रहे हैं प्रेम प्रेम से। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, एक गोपी बोली, अरे सखियो तुम नंदनंदन श्याम सुंदर की बात करती हो ना, यह वृंदावन की शोभा तो श्याम सुंदर से ही भई है।
वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यत देवकी सुत पदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षा दृशान परतान समस्त सत्वम।
तब तक एक सखी बोल उठी, अरी सखी हो देखो यह वृंदावन की जो शोभा है ना, ये नंदनंदन श्याम सुंदर के ही कारण तो यह वृंदावन की इतनी शोभा भई है। यह तो देवकी सुत पदाम बुजलब्ध लक्षण, जो देवकी नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर के चरणों से स्पर्श होकर के ये ब्रजभूमि वृंदावन अत्रमणीक बन गया है। और जब प्यारे श्याम सुंदर गैया चरा रहे हुए वृंदावन में और अपने आधरों पर रख करके मुरली बजा रहे हो तो मुरली की धुनी को सुनकर के मोर नृत्य करने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं, और ऐसे नाचते हैं कि श्याम सुंदर भी उन मोरों के साथ ही वो भी नाचने लगते हैं। तो उनके सुंदर दृश्य को देख करके पर्वतों पर विचरने वाले पशु पक्षी भी एकदम चित्रलेखे से खड़े रह जाते हैं, अपलक दृष्टि से उनकी सुंदर छवि को देखते हैं, वेणु माधुरी और रूप माधुरी का बड़ा ही आनंद लेते हैं। यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में कहा है कि जंगल के मोर भगवान श्याम सुंदर से कहते, श्याम सुंदर अपनी मुरली को बजाओ ना और हमको नचाओ। तो मोर भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मुरली को बजाओ और हमें नचाओ। तो भगवान बड़े प्रेम में विभोर होकर के मुरली को बजाते थे। सुनते ही मोर इतना बढ़िया नृत्य करते थे, भगवान के मुरली के सुर में सुर, धुन में धुन, ताल में ताल मिला करके मोर नृत्य करते थे, चारों तरफ से घेर लेते भगवान को। बड़ा सुंदर मोरों का नृत्य, और भगवान भी इतना बढ़िया नृत्य करते थे कि मोर शर्मिंदा हो जाते, ओहो ये तो हमसे ही बढ़िया नाच कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब मोर भगवान की बांसुरी से प्रसन्न होकर के नृत्य करके संतुष्ट हो जाते हैं, तो भगवान को उपहार में अपने मोर पंख अर्पित करते, प्रभु हमारे पास और तो कुछ है नहीं, इन मोर पंखों को उपहार में स्वीकार करो। तो भगवान बड़े प्रेम से उन मोर पंखों को लेकर के और अपनी पगड़ी में लगा लेते, भगवान अपने मस्तक पर लगा लेते। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन गोपियां हैं, यहां तक कि वन के मृग पक्षियों को भी धन्य बता रही हैं।
धन्याय स्म मूल मतयोपि हरणीयता, धन्याय स्म मूल मतयोपि हरणीयता, नंदनोपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरड़ितम सह कृष्ण सारा पूजां दुर्विरचिताम प्रणयावलोकई।
गोपियां कहती, अरे सखियो हमसे तो भाग्यशाली है, जंगल की हिरणी है, जंगल की हिरणी। जब प्यारे श्याम सुंदर गैया चराबे के लिए वन में जा रहे हुए और जब नंदनंदन मुरली को बजाते हैं, तो उनकी मुरली की ध्वनि को सुनकर के वृक्षों के झुरमुट में से अपने कृष्ण सार पतियों के साथ हिरणियां निकल आती, हिरणी। और भगवान श्याम सुंदर की सुंदर छवि को, उस रूप माधुरी को दर्शन करती हैं। दर्शन क्या करती हैं, वो अपने 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 मोटे मोटे कमल जैसे नेत्रों को मानो भगवान के चरणों पर न्योछावर कर देती हैं, भगवान के चरणों को अल्पक अपलक देखती रहती हैं, और भगवान भी उन हिरणियों के इस सत्कार को स्वीकार करते हैं, मानो उनकी ओर तिरछी नजर से देखते हैं, मानो उनको भी उनका सत्कार कर रहे हिरणियों का। गोपियां कहती हैं, अरे सखियो हमसे तो धन्य ये हिरणियां, जंगल की हिरणियां हैं। अरे हमारे घर वाले तो हमसे कुड़ने लगते हैं कन्हैया से प्रेम करें, तो बताओ जंगल के पशु पक्षी भी तक कन्हैया से प्रेम करते हैं, या हम उनसे प्रेम करते हैं, तो कौन सी ऐसी बात है।
कृष्ण निरीक्ष बने तो स्वरूप असीलम श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विमो विवेक गीतम देव्यो विमान गतय स्मरणं सारा भ्रस्यत् प्रसूनक वराम मुहुर्विनिभ्य।
तब तक दूसरी सखी बोल उठी, अरे सखियो कृष्णम निरीक्ष बनतो स्वरूपशीलम, अरे हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि स्त्रियों के नेत्रों के तो उत्सव हैं उत्सव। अरे उनकी बेणू को, उनकी बेणू की ध्वनि को सुन करके और उनके मधुर संगीत को सुन करके आकाश मार्ग में देवियां अपने पतियों के साथ विचरण कर रही होती हैं, और उन देवियों के कान में जब मुरली की ध्वनि जाती है और श्याम सुंदर के विचित्र वेश को रूप को देखती हैं, उनकी निराली गति हो जाती है। इतना कृष्ण के प्रति प्रेम उनका उमड़ता है कि उनके जूड़ा में लगे हुए, जो केस में लगे हुए पुष्प नीचे गिर जाते हैं, उनके वस्त्र ढीले पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ अपना होश हवास ही नहीं रहता। अरे देवियां भी तो प्रेम करती हैं भगवान श्याम सुंदर सो, तो हम प्रेम करते हैं तो क्या ऐसी बात है ना। तब तक दूसरी सखी बोली, अरे सखियो तुम देवियों की और हिरणियों की बात करती हो, अरे हमारी गैया और बछड़न को देखो ना, ये भी कितनों प्रेम करे नंदनंदन श्याम सुंदर सो। बोली गावश्च कृष्ण मुख निर्गत भेणु गीत, पीयू समुत्थित कर्ण पुटई पिबंती, सावा स्मत स्तन पय कवला स्मत स्थुर, गोविंद आत्मनींद्र सा अस्त्र कला प्रसंती। कुछ गोपियां बोली आरी सखियो तुम हिरण्यन की और देवियों की मोरन की बात कर रही हो, अरे हमारे गैया और बछड़न को देखो ना, हमारी गैया भी नंदनंदन श्याम सुंदर तो कितनों प्रेम करे हैं। जब श्याम सुंदर गैया चरा रहे होए और मुरली को बजा रहे होए, गैयन के कान में मुरली की ध्वनि पहुंच जाए तो वो घास चरनों भूल जाए, घास चरन उनके मुंह में घास को तिनका बस लगाई रह जाता है, न उस तिनकों को उगल पाती है न निगल पाती है। और नंदनंदन श्याम सुंदर की सुंदर छवि का अपने नेत्रों से ऐसा दर्शन करती है, अपलक नेत्रों से ऐसा लगता है मानो श्याम सुंदर को नेत्र रूपी दरवाजों से अपने हृदय में ले जाएं। कितना प्रेम करती हैं, जो इनकी आंखों से प्रेमास्त्रों की धारा बह रही होती है, और इनके बछड़े अरी सखी, बछड़ों की तो निराली गति हो जाती है जब बछड़े अपने गैयों को दूध पी रहे हों और उनके कान में मुरली की ध्वनि आ जाए, सखी वो बछड़ा भी दूध पीना भूल जाते हैं, उनके मुंह में दूध का घूंट न तो अंदर निगल पाते न उगल पाते, उनकी भी निराली दशा हो जाती है, वो भी कृष्ण के प्रेम में इतने विभोर हो जाते हैं, देखती हो ना उनके भी आंखों में प्रेमास्त्रों की धारा बह रही है। कितनों प्रेम करें, ये भी पशु पक्षी भी प्रेम करें, गैया बछड़े प्रेम करें। कुछ सखी बोली अरी सखी प्रायो बतांब बिहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतं आरुह्य येद्रुं भुजान् रुचिर प्रवालान् श्रवन्ति मीलिद्रसो विगतान्निवाच। कुछ सखी बोली अरे सखी हो तुम गैयन की बात कर रही हो, अरे यह वन के जंगल के पक्षियों को देखो, पक्षियों को प्रायो बताम बेहगा मनयो बनेस्मिन। अरे सखियो इस वन के जो पक्षी हैं प्राय अधिकतर कोई ऋषि और मुनि ही हैं, कोई ऋषि और मुनि हैं जो कृष्ण की मुरली को सुनकर के उनके गीत को सुनकर के वृक्षों के झुरमट में बैठे हुए होते हैं और नंदनंदन श्याम सुंदर की ओर टकटकी लगा के देख रहे होते हैं और उनकी वेणु माधुरी का कितना बड़े प्रेम के साथ श्रवण कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है सखी इन ब्रज के पक्षियों को पक्षी कहना भारी भूल है, अपराध है, ये ब्रज के पक्षी पक्षी नहीं, ये तो पहले कोई ऋषि और मुनि है जो इस समय ब्रज में पक्षी को रूप धारण करके नंदनंदन श्याम सुंदर की रूप माधुरी और बेणु माधुरी का रसास्वादन ये कर रहे हैं। दूसरी सखी बोली अरे सखी तुम पशुन की, पक्षियों की, मोरन की इत्यादि बात करो। अरे ये हमारी यमुना नदी को देखो ना,
नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगत ऊर्म भुजई मोरारे गृहणंत पादयुगलम कमलोपहारा।
तब तक दूसरी सखी बोल उठी, हरी सखी यमुनाजी को देखो ना, यमुनाजी नदनंदन श्याम सुंदर को कितनो प्रेम करती हैं। जब श्याम सुंदर की मुरली की ध्वनि इनके कान में पहुंच जाती है तो यमुना का जल खड़ा हो जाता है और ये अपनी तरंगों से कन्हैया का स्पर्श करना चाहती हैं और मानो जो कमल के फूलों को उनके चरणों में अर्पित करना चाहती हैं। ये यमुना भी कितनो प्रेम करती है। तब तक दूसरी सखी बोली, अरी सखियो तुम यमुना की बात कर रही हो, ये तो पृथ्वी की बात है। तुम देखो ना आकाश बादल को, जब श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ गंगा चरा रहे होते हैं और काफी कड़ाके की धूप होती है तो ये बादल भगवान श्याम सुंदर पर कितनो प्रेम करे, अपने शरीर को ही छाता तान देते हैं बादल। जब धूप पड़ रही हो तो ये बादल अपने शरीर को ही छाता तान देते हैं और श्वेत नन्नी नन्नी श्वेत श्वेत बूंदों से उनके ऊपर वर्षा करते हैं, मानो ऊपर से सफेद फूलों की वर्षा कर रहे हो। ये भी कितनो प्रेम करें। तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखियो तुम बादल की बात कर रही हो।
पूर्णा पुलंद उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुमकुमेन दयता स्तन मंदितेन तदर्शन स्मर रुजस्त्रण रूषितेन लिंपन्ति आनन कुचेषु जहोस्तराधि।
तब तक दूसरी सखी बोली, अरे सखियो अरे तुम बादलन की बात कर रही हो, देखो इन जंगल की रहने वाली भीलनियों के भाग्य। ये भीलनी भी कितनी भाग्यशाली हैं, ये भीलनी जंगल में रहती हुए भी कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। जब प्यारे श्याम सुंदर गैया चराबे के लिए वन में जा रहे हो तो ये वृक्षों से बाहर निकल आती हैं और जब श्याम सुंदर आगे निकल जाते हैं तो घास पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो कुमकुम लग जाता है उस कुमकुम को उठा करके अपने स्तनों से अपनी हृदय से लगा करके और अपने हृदय की पीड़ा को शांत करती हैं। कितनो प्रेम करती है नदनंदन श्याम सुंदर से जंगल की भीलनी भी। तब तक दूसरी सखी बोल उठी, अरे गिरिराज जी को देखो ना,
हंतायम अद्रियबला हरिदास बरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोत सहगो गणयो स्तयोर्यत पानी सूय वस कंदर कंद मूलय।
तब तक दूसरी सखी बोली, अरे सखी इन गिरिराजी को देखो ना कितने भाग्यशाली हैं, देखो कितने प्रसन्नता में ये फूले नहीं समारे मारे खुशी के मारे। अरे सखी ये खुशी में क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भगवान राम भगवान बलराम और कृष्ण इन पर विचरण जो करते हैं उनके चरण चिन्हों से ये कितने सुशोभित हो रहे हैं। तभी तो भगवान के लिए और उनके सखाओं के लिए खाने के लिए कंद मूल फल देते हैं और बैठने के लिए बड़ी सुंदर गुफाएं हैं और पीने के लिए अपने झरनों का जल देते हैं, कितनी भगवान की सेवा करते हैं, ये भी बड़े भाग्यशाली है। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इस प्रकार गोपियाएं भगवान की रूप माधुरी और वेणु माधुरी का बड़ा सुंदर वर्णन करती हैं, क्योंकि एक दिन की नहीं रोज रोज की बात यह है कि गोपियां हैं रोजाना ही भगवान की सुंदरता का और उनकी रूप माधुरी का वेणु माधुरी का वर्णन करती रहती थी। समय ज्यादा हो गया और यहीं हम कथा को विराम देंगे।